एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो आजकल जो एक डिस्कोर्स है वो ये डिस्कोर्स है कि भाई नौजवान आज का नौजवान जो है वो हो गया अवेयर, आज का नौजवान जो है वो अवेयर है और वो उसको पता है अपने हालात का और वो बेवकूफ़ नहीं रहा और ये और वो समझदार हो गया ये वो, और वो हालात को बदलना चाहता है। ये पूरे यानी कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर ये डिस्कोर्स है। अगर आप इंडिया को भी देखें और पाकिस्तान में भी देखें तो वो सारा का सारा यही डिस्कोर्स है कि आज का नौजवान बहुत अवेयर हो गया है, सही। और उसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की गई है कि वो अवेयर भी और रेडिकल भी है, रेडिकल आइडियाज़ है उसके, लेकिन उसकी सारी रेडिकलाइजेशन जो है वो लॉपसाइडेड वन डायमेंशनल है और वो रेडिकलिज्म जो है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और इस्लामिक वैल्यूज़ और ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस की तरफ तो वो बड़ा रेडिकल है। ख़ास तौर पे जो चार बुनियादी चीज़ें हैं उनको हमने अलग सिंगल आउट नहीं किया था, अभी जिस चीज़ पर मैं बात करूँगा रिपीटेशन और डिफरेंस, रिपीटेशन एंड डिफरेंस इसके ऊपर है, लेकिन बुनियाद आज का, लेकिन अभी मैं ऐसे ही ब्रीफली बता दूँ कि वो ये कहते हैं कि भाई ये जो हमारा जो पैट्रियार्की है यानी कि रिलीजियस सोसाइटीज़ हायरार्किकल सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें हिफ्ज़ मरातिब होते हैं, तो हिफ्ज़ मरातिब जो है वो मज़हबी बुनियादों पर भी हिफ्ज़ मरातिब की को कायम किया जा सकता है और रिवायात की बुनियाद पर भी हिफ्ज़ मरातिब को कायम किया जा सकता है। दोनों को एक ही तीर से आप शिकार करते हैं और आप कहते हैं पैट्रियार्कीज़ है, तो पैट्रियार्की के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि एक ही तीर से दो शिकार होते हैं, एक तो ये कि आप रिलीजियस हायरार्किकल ऑर्डर को भी कंडेम कर देते हैं और उसके साथ साथ मेल डोमिनेशन को कंडेम करने के साथ साथ फेमिनिज्म के लिए या मुस्लिम फेमिनिज्म के लिए एक फंडामेंटल ग्राउंड जो है वो पैदा हो जाता है आपके लिए। तो रेडिकलाइजेशन में जो जो वुमेन काउंटर पार्ट्स हैं उनके, उसके लिए एक अपीलिंग जो एजेंडा होता है वो ये कि भई दे आर अगेंस्ट पैट्रियार्की मीन्स दे आर अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, सही है। तो वो पूरा जो रेडिकल जो चंक है उसके अंदर जो वुमन की कंट्रीब्यूशन है, ख़ास तौर पे जो जवान बच्चियां हैं उनको अपने साथ केटर करने का, तो वो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि टेक्स्ट जो है वो डेफिनेट टेक्स्ट जो मुसलमानों के अंदर रहा है और डेफिनेट ट्रेडिशंस हैं, ये दोनों को हम टेक्स्ट के तौर पे ही लेते हैं। यानी कि जब आप कहते हैं टेक्स्ट तो टेक्स्ट से मुराद कुरान और सुन्ना का वो इल्मियत जो महफूज हो गई है किसी ना किसी तौर पे और उसके नुमाइंदा हैं उलमा, और दूसरा एक और टेक्स्ट होता है जिसे टेक्स्ट बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस हम कहते हैं, कि कुछ रिवायात होती हैं जो तरतीब के साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मुंतकिल होती है। वो बुनियादी तौर पर दावे में मजहबी नहीं होती बल्कि वो कहते हैं कि नहीं ऐसा होता है, बड़ों की बात सुननी चाहिए, बड़े ये कहते हैं, ये हमारी रिवायत है। तो उसमें दूसरा जो टेक्स्ट है वो रिवायात है, सही है, ट्रेडिशन। अब ट्रेडिशन को हम कल्चर से अलग समझते हैं। ट्रेडिशन के अंदर हमेशा ये बहस होती है कि व्हाट ट्रेडिशन इज़ ऑलवेज डिफाइंड बाय वर्च्यू ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अगर एक ट्रेडिशन को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, खालिद भाई भी फॉलो कर रहे हैं, तो हम दोनों के अपनी अपनी रिवायात है, लेकिन जब मेरा और खालिद भाई का ट्रेडिशन आपस में टकराएगा तो इस बुनियाद पे जज किया जाएगा कि मेरे ट्रेडिशन के पीछे कौन सी अथॉरिटी है और खालिद भाई के ट्रेडिशन के पीछे कौन सी अथॉरिटी। मेरे ट्रेडिशन के पीछे मेरे आबाओजदाद हैं और खालिद भाई के ट्रेडिशन के ऊपर अगर पैगंबर है तो मेरे ट्रेडिशन को रद्द कर दिया जाएगा जेन्युइन ट्रेडिशनल सोसाइटी में, और नहीं अगर किया जा सकेगा तो इसका मतलब है कि रिलीजियस ट्रेडिशन और सेक्युलर ट्रेडिशन के बीच में एक एंटागनिज्म पैदा होगा, जबकि कल्चरल डिस्कोर्स के अंदर प्रायोरिटी ऑफ कल्चर जो है वो कोई एकेडमिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होती। तो जो दूसरा इशू है वो ये कि टेक्स्ट के खिलाफ टेक्स्ट के बारे में रेडिकल व्यूज रखना, कि भाई मैं क्यों मानूं सुन्ना की अथॉरिटी, मैं क्यों मानूं मौलवी की अथॉरिटी, मैं क्यों मानूँ अपने आबा अजदाद की अथॉरिटी? तो अथॉरिटेरियन जो जो टेक्स्ट की अथॉरिटी है उसकी तरफ भी एक रेडिकल एटीट्यूड है। तीसरा जो रेडिकलिज्म है वो इंस्टीट्यूशनल नौइयत का, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन आपके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के नतीजे में इमर्ज हो गया, उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेबल इंस्टीट्यूशन विच यू आर कैरिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इज फैमिली। यानी कि ट्रेडिशन से भी सपोर्ट होता है और रिलीजन से भी सपोर्ट होता है और पैट्रियार्की से भी सपोर्ट होता है, चाहे वो रिलीजियस हायरार्किकल ऑर्डर हो या ट्रेडिशनल हायरार्किकल ऑर्डर हो। ये फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि दुनिया के सामने आप पेश करते हैं। इसके बारे में भी जो हमारी यूथ है उसके बारे में ये इम्प्रेशन कि वो रेडिकल है इन चीज़ों के बारे में, कि ये बाप कौन होता है मुझे बताने वाला कि मेरी अथॉरिटी क्या है, ये फला कौन है जो मुझे बताएगा वगैरह वगैरह। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है ये तो सब रेडिकल हैं, लेकिन अगर ये रेडिकल हैं तो एक दूसरे एंगल पे ये बेइंतहा कन्फॉर्मिस्ट भी जनरेशन है। यानी कि इस वक्त की जो नौजवान हैं वो रेडिकल होंगे लेकिन इनसे बड़ा कन्फॉर्मिस्ट भी आपने अपनी तारीख में नहीं देखा होगा। यानी कि ये जो रेडिकलिज्म के नाम से जो पर जो कन्फॉर्मिटी असर्ट कर रहे होते हैं वो कन्फॉर्मिस्ट आइडियाज़ हैं जो 17वीं और 18वीं सदी के लिबरल थॉट के हैं। तो भाई अगर तुम इसके बारे में क्रिटिकल हो तो उसके बारे में क्रिटिकल क्यों नहीं हो? तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं मैं और खालिद भाई, वो ये है कि हम ये बताएं कि ठीक है भाई आप रेडिकल हो गए लेकिन आपका रेडिकलिज्म लॉप साइडेड है, वन डायमेंशनल है। तो ये कौन सा नया ख्याल पेश कर रहे हो आज़ादी के नाम पर? कौन सा नया ख्याल है? ये कौन सा नया ख्याल तुमने पैदा कर दिया? फ्रीडम के बारे में कौन सा नया ख्याल है या वुमेन इमेंसिपेशन के बारे में कौन सा नया ख्याल है? सारे जो है ये 17वीं और 18वीं सदी के पिटे हुए तसव्वुरात हैं। अब तो जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं उन्होंने धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं इन तसव्वुरात की। तो तुम्हारी कानों में वो आवाज़ें क्यों नहीं पड़ी अभी तक? अगर तुम रेडिकल हो तो भाई रेडिकल हो ना, फिर दिखाओ रेडिकलिज्म, हम भी देखें कितने रेडिकल हो तुम। है तुम रिलीजन का डिसिप्लिन तुम्हें तकलीफ देता है और ट्रेडिशन का डिसिप्लिन तुम्हें तकलीफ देता है, पैट्रियार्की का डिसिप्लिन और कॉर्पोरेट डिसिप्लिन उसमें तो तुम बड़े जो है सर के बल खड़े रहते हो। तो कॉर्पोरेट डिसिप्लिन के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते भाई? सरमायादारन है डिसिप्लिन के खिलाफ क्यों नहीं खड़े? उसमें तो तुम कहते हो भाई हम कंपेटिटिव हैं और कंपेटिटिवनेस ही हमारी वैल्यू है। उसके अंदर जो तुम्हें वो डिसिप्लिन करता है ऑर्डर 17 साल तक 18 साल तक तुम्हारी एजुकेशन के नाम पर और फिर अगले 30 साल तक तुम्हारी क्या कहते हैं जॉब के नाम पर, और उसमें नाकाम होने के बावजूद भी तुम्हारी रेडिकलाइजेशन कहाँ जाती है? तुम कहते हो मैं कम स्किल्ड था इसलिए अपनी स्किल में इजाफा करूँगा। है हर कोई अपनी स्किल में इजाफा करता है। 40-40 साल के बुढ़े माठे जो है बैठ के पढ़ रहे होते हैं, बड़े मोटे मोटे सारे हिल रहे होते हैं उनके। तो भाई तुम्हारा रेडिकलिज्म कहाँ गया? बोलो सिस्टम को ऐसी तेजी सिस्टम की हमें जॉब नहीं मिली किसी को नहीं चलने देंगे, वहां पे तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने उस डिसिप्लिन को लेजिटिमेट समझते हो और इस डिसिप्लिन से मुतमत्ते होने के इम्कान हैं तुम्हें। तुम्हें तुम्हारी ये इम्कान है कि मैं जब स्कूल का डिसिप्लिन इख्तियार करूँगा और सरमाए का डिसिप्लिन इख्तियार करूँगा तो मुझे मुतमत्ते होने के इम्कान मिलेंगे। तो दोनों सूरतों में आज़ादी को तो तुमने कुर्बान किया है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है अभी हम ये प्रिज्यूम करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिफेंड इस्लाम एंड ट्रेडिशनलिज्म एक्सेट्रा। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन लिबरल ऑर्डर। लिबरल ऑर्डर में फर्द की आज़ादी के इम्कान कितने होते हैं और ये इसमें किस हद तक इल्यूजन है, ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दो सेशन इसमें लिए। अब मैं आज जिस चीज़ पर बात कर रहा हूँ बुनियादी तौर पर इसको मैं ले आके जोड़ूंगा गिल्स डिल्यूज से। ठीक है, डिल्यूज एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो थिंकर है और उसका काम है यानी कि कैपिटलिज्म की मेटाफिजिकल फाउंडेशन के साथ। लेकिन अभी हम एकदम से डिल्यूज पे हम जंप नहीं कर सकते, डिफिकल्ट थिंकर। लेकिन हम एक बेसिक आइडिया से अपनी यूथ के हवाले, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब हम कहते हैं तो हमारा फोकस है पोस्ट कॉलोनियल यूथ, अपने लोगों के हवाले से हम एक बात करें। तो आपने देखा होगा टू बी ऑन ऑन रियलिस्टिक ग्राउंड जो जो हमारे यहाँ डिस्कशन में आ रहा है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि जैसे अगर आप अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन आप करते हैं, एक क्वेश्चन आप पोज करते हैं, तो उसके बाद कुछ बच्चे उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, तो कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड जब कर देते हैं तो बाकी बच्चे जो उन उस ख्याल से अग्री कर रहे होते हैं वो सब का एक ही जुमला होता है सेम, या कुछ बच्चे जवाब देते ही नहीं कि भाई ये एग्जॉस्ट हो गया, ये पता चल गया, तो जब उनको आप पिंच करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है सर ये रिपीट हो जाएगा। तो जो जो चीज़ आपको पता चलती है वो ये पता चलती है कि रिपीटेशन बहुत गंदी बात होती है, समझे भाई, जो इस वक्त की एक बड़ी पावरफुल वैल्यू है जिसे आप गैर महसूस तरीके से इख्तियार कर रहे हैं वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन गंदी बात होती है, जैसे टीचर होते हैं पेपर चेक कर रहे होते हैं तो एक ही चीज़ को वो रिपीट कर रहा होता है, जैसे हमारे एक दोस्त ने को पेपर दिया गया तो पेपर में उस पर था एक मज़मून लिखना था इत्तेफाक़ में बरकत है, इत्तेफाक़ में बरकत है, तो उन्होंने उन्हें आता वाता नहीं था तो उन्होंने कहा इत्तेफाक़ में बरकत है क्योंकि हम लोग सब ये जानते हैं इत्तेफाक़ में बरकत है लिहाजा इत्तेफाक़ में बरकत है, और हमारे बड़ों ने भी ये बताया कि इत्तेफाक़ में बरकत है लिहाजा इत्तेफाक़ में बरकत है, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए क्योंकि इत्तेफाक़ में बरकत है, और हम सब अगर मिल के रहेंगे तो उसके नतीजे मुल्क और कौम तरक्की करेगा, और तरक्की इत्तेफाक़ से होती है क्योंकि इत्तेफाक़ में बरकत है, और आखिरी पेज पर बड़ा बड़ा लिख दिया इत्तेफाक़ में बरकत है, तो ज़ाहिर है कि उनको नंबर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने रिपीटेशन कर दिया, रिपीट कर दिया, एक ही ख्याल बार 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 रिपीट हो तो इसका मतलब है वो अपनी वक़्त खो देता है, एक ही ख्याल बार बार इजहार हो तो अपनी वक़्त खो देता है, एक ही गाना बार बार रिपीट हो वो अपनी वक़्त खो देता है, एक ही फिल्म बार बार चले वो अपनी वक़्त खो देती है, तो रिपीटेशन एक बुरी चीज़ होती है, एक घटिया चीज़ होती है, एक गलत चीज़ होती है। अब अगर आप इंसानी तारीख देखें तो क्या वाकई रिपीटेशन बुरी चीज़ होती है या नहीं होती, यू नो, तो ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो रिपीटेशन के मद्दे मुकाबिल जो वैल्यू पेश की जाती है वो इसके एंटागनिस्टिक जो वैल्यू पेश की जाती है बुनियादी तौर पर वो डिफरेंस की वैल्यू है, रिपीटेशन वर्सेस डिफरेंस, डिफरेंट। लेकिन उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड वैल्यूज़ होती हैं वो होती है नॉवल्टी, स्पॉन्टेनिटी, कंटिंजेंसी, नॉवल्टी, स्पॉन्टेनिटी, कंटिंजेंसी एंड फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि एक आज़ाद आज़ादी को जो वैल्यू करेगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो नॉवल्टी को भी वैल्यू करे, स्पॉन्टेनिटी को भी वैल्यू करे, कंटिंजेंसी को भी वैल्यू करे, और रिपीटेशन को डिस्करेज करे। अगर तुमने रिपीटेशन को कैरी किया तो तुम किसकी नफ़ी करोगे, नएपन की, नॉवल्टी की नफ़ी कर दोगे, स्पॉन्टेनिटी अस खुद रफ्तगी की नफ़ी कर दोगे, और तुम कंटिंजेंसी की नफ़ी कर दोगे, तो उसके नतीजे में जो माशरा पैदा होगा वो कैसा माशरा होगा, वो एक ऐसा माशरा होगा जो कि यक रुखी माशरा होगा, वन डायमेंशनल। तो रिपीटेशन या रिपीटेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं या रिपीटेटिव लाइफ फॉर्म जो होती है वो एक अफसोसनाक बेरंगी बोर और उकता देने वाली माशरत होती है, और कंटिंजेंसी, नॉवल्टी, स्पॉन्टेनिटी एक आज़ाद माशरत पैदा करती है जिसमें नैरंगी होती है, रंगारंगी होती है और नयापन होता है, जिद्दत होती है, अस खुद रफ्तगी होती है, जो कि हर वक्त तुम्हें इंगेज रखती है। सही है। अब आप देखें कि दोनों चीज़ें जो हैं, स्पॉन्टेनिटी या डिफरेंस या रिपीटेशन, इन इट सेल्फ ये एंड्स हैं या मीन टू एन एंड है। यानी कि जब भी आप कहेंगे ना रिपीटेशन, तो लोग पूछेंगे रिपीटेशन ऑफ व्हाट, और आप कहेंगे डिफरेंस, तो पीपल विल आस्क यू डिफरेंस ऑफ व्हाट। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज अ वेरी बिग व्हाट, ये कोई छोटा मोटा व्हाट नहीं है भाई। तो अगर फर्ज किया कि रिपीटेशन में, अगर रिपीटेशन को आप माइनस कर दें रिपीटेशन ऑफ व्हाट से, और डिफरेंस को आप माइनस कर दें डिफरेंस ऑफ व्हाट से, तो मुजर्रद तौर पे जब आप रिपीटेशन और डिफरेंस को देखेंगे, तो आप मोस्टली ऑर्डिनरी मैन जो है ही विल गो फॉर डिफरेंस। समझे? क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे बार बार जाते रहोगे। पिकनिक पे जाते थे, तुम्हारे अब्बा तुम्हें ले जाए और एक ही जगह लेके जाते, एक ही जगह, एक ही तरतीब है वहाँ पे। पिकनिक मनाने की भी एक ही तरतीब है कि बहुत सारे, एक बहुत बड़े भगोने में बिरयानी बना ली और एक जगह चले गए, और वहाँ पहुँचते ही अब्बा का सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि सबसे पहले वहाँ पे एक चादर बिछाई जाए और उस पर भगोना रखा जाए और सब बिरयानी खाना शुरू कर दे, चाहे सुबह के फजर की नमाज हो रही हो, चाहे दोपहर के 2 बज रहे हो, चाहे 10 बज रहे हो, 10:30 बज रहे हो, और आपको एक ही पैटर्न पता है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, ये होगा, ये होगा। जिस तरह बच्चे जो होते हैं, घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो बूढ़े होने आते हैं, लेकिन यही पैटर्न चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि अब्बा के हाथ में इख्तदार अभी तक है। लेकिन जब दूसरी बहुएँ आ जाती हैं, बेटों की शादी हो जाती है, तो बहुएँ कहती हैं ये कौन सी पिकनिक हो रही है, चपेंगी पिकनिक, बस एक बिरयानी का डब्बा लेके चले जाओ, वहाँ पे बैठो, और कुछ और करने ही नहीं था अब्बा, एक ही स्पॉट पे जाके, क्योंकि वो स्पॉट अब्बा को पसंद है। और अब वहाँ पे वो कुछ नहीं रहा, सिर्फ उनका ख्याल है कि यहाँ अच्छा स्पॉट था, अब वहाँ पे कोई अच्छा ही नहीं रही। वो सब अपने शौहरों को कंडेम करती रहती है, कंडेम करते, लेकिन शौहर कहते हैं भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अब्बा को यही पसंद है, अब क्या किया जाए, यही है पिकनिक, इसी को पिकनिक समझ। तो वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं क्या आपके ख्याल में बेटा? बेटा पिकनिक मनाने नहीं जा रहा, बेटा बाप की खुशी के लिए जा रहा। तो रिपीटेशन क्यों है? ये रिपीटेशन है टू इंश्योर द सैंक्टिटी ऑफ ऑफ द कमांडिंग अथॉरिटी ऑफ द फादर। कहता है मीन्स तुम सच बता दो तुम्हें मज़ा आता है, नहीं मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब्बा को यही जगह पसंद है। तो अम्मी जब जिंदा थी ना, वो यहाँ बैठती थी, अब्बा यहाँ बैठते थे, अब्बा को ये, अब्बा वहां पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अम्मा को पसंद थी वो जगह, अम्मा तो मर गई, अब अब्बा वहां बैठे याद करते हैं। और वहां पे मोस्टली उनकी जो गुफ्तगू होती है अम्मा से मुताल्लिक ही होती रहती है। अरे तुम्हारी माँ ने यहाँ पर ये पकड़ी थी मछली, याद है, और ये किया था, ओ ये कर। इसका मतलब है ये रिपीटेशन अब्बा की पिकनिक भी नहीं है, ये रिपीटेशन वो यादें हैं जो उनके अब्बा की उनकी बीवी के साथ थी, और वो बता रहा है कि मैं और तुम्हारी माँ बाइक के ऊपर आते थे फ्रांसिस बर्नार्ड पे बैठ के। तुम्हारी उम्र, माँ की उम्र उस वक्त थी 16 साल और मैं था 20 साल का, इतने सॉलिड थे हम लोग कि ये 100-150 किलोमीटर हम बाइक के ऊपर आते थे सर्दी में बगैर हेलमेट के, ऐसा था मैं, और तुम लोग डरते हो, रात को 3 बजे निकलते थे, ये होता था, वो होता था, क्या बात। लेकिन जो बहुएं हैं, जाहिर है उनको ना मोहब्बत है, ना उनका ताल्लुक है, ना उनकी हिस्ट्री है, पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं। कौन सी अच्छी जगह है, क्यों आते थे ये लोग यहाँ पे धूल मिट्टी में बैठने के लिए? तो रिपीटेशन को अगर आपने डिफाइन किया रिपीटेशन से, तो आप माइनस कर देंगे रिपीटेशन ऑफ व्हाट से। अगर आप देखें ट्रेडिशनल रिलीजियस सोसाइटी, तो वो चल रही होती है तकलीद के ऊपर, मुकल्लिदीन होते हैं ना, वो मुकल्लिद होते हैं, वो तकलीद कर रहे हो। अब तकलीद क्या होती है? तकलीद भी रिपीटेशन होती है, रिपीट करता है, यही करता है ना भाई। हजरत उमर बाज जगहों पे चलते हुए उतर के जाके झाड़ी के नीचे बैठ जाते। सबसे जो बड़ा रैशनल आदमी है तुम्हारा, जिसके बारे में मशहूर है, यूरोपियन गिब्स, मॉन्टगोमरी वॉट, लुइस, वो तक एक्नॉलेज करते हैं कि भाई ये आदमी है जो डिसीजन लेता है, स्टेट्समैन है, है? वो आदमी जाके झाड़ी के नीचे, क्यों? क्योंकि पैगंबर यहाँ पे बैठे थे तो मैं भी बैठ जाता हूँ। अरे भाई पैगंबर उस वक्त बैठे होंगे, थक गए होंगे कि कोई वजह होगी इसलिए बैठे, नहीं मैं इसलिए बैठता हूँ कि वो भी तो बैठे थे ना, तो मैं इस झाड़ी के नीचे इसलिए बैठता हूँ कि बैठे। एक जगह थी जहाँ पर तीन पत्थर जो थे वो टूट गए थे, लेकिन वो इस तरह पड़े हुए थे, तो हज़रत उमर उसके ऊपर ज़रूर लेटते थे असर की नमाज के बाद जाके। तो लोगों ने कहा भाई ये इसको चबूतरा मजबूत कर देते हैं इसका। तो उन्होंने कहा नहीं, ये टूटा हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही लेटते थे इसमें, तो मैं इसलिए लेटता हूँ इसमें। टेढ़ा मेढ़ा टूटा हुआ और एक 6.5 फीट का आदमी उसके ऊपर बैठता, तकलीफ भी होती होगी ना। तो कहता मैं इस तरह ही लेटता। अब ये रिपीटेशन है ना, ये सेंसिबल है क्या? ये बात सेंसिबल बात है। उसूलन उन्हें चाहिए था कि वहाँ पे एक ट्विन टावर की तरह मॉन्यूमेंट था, सारी दुनिया को लूटते, डंडे मारते, गुलाम पकड़ के लाते और बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनाते, पाकिस्तान से भी नजर आता। यही है ना, हम लोग यही चाहते हैं ना, ऐसी बिल्डिंग बनाए पूरी दुनिया देखे, यहाँ पाकिस्तान से नजर आता वो मॉन्यूमेंट। क्या जगह थी! और वो जो तीन पत्थर थे जाओगे उनको लगा देते छत के ऊपर, और कहते सबसे जो नेक आदमी होगा ना या सबसे, वो जाके बैठेगा उस पर छत पे, और बाकी कोई नहीं जा सकेगा। उससे कम फर्स्ट फ्लोर पे चाहेंगे, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और उसके नीचे किराए पे चढ़ा दे। और ये कि वो भी आते रहता, रेवेन्यू भी आता रहता, और ये कि पूरे दुनिया में कुरानदाजी होती। और कहते भाई वो पत्थर, वो पत्थर में नहीं बैठ जाए, पत्थर की छाँव में ही बैठ जाओ, है भाई। तो इस पर और वो डाली जो है वो कटवा देते, या उसकी जगह पे कोई जो बना दे, कोई दरख्त लगवा देते, बहुत बड़े बड़े जंगल बना देते वहाँ पूरा। ऐसा वैसा कुछ नहीं किया ना उन्होंने, रिपीट किया, लेकिन वो रिपीटेशन जो है वो रिफ्लेक्ट होता है वर्ड्स के अंदर भी, एक्शन में भी, अथॉरिटी में, हर चीज़ में। तो मुकल्लिदीन जो होते हैं ना, तकलीद करने वाले जो माशरे होते हैं, उसकी एक बड़ी डोमिनेंट वैल्यू होती है रिपीटेशन। वो रिपीट कर रहे होते हैं ट्रेडिशंस को, रिपीट करने के नतीजे में तवातुर। खालिद भाई ये एक वो है ना, हदीस में भी है ना कि कौन सी हदीस कितने तवातुर के साथ रेफर की गई, ये भी वैल्यू किया जाता है कितने तवातुर के साथ वो इस्तेमाल हुई है, है? तो अब इसका मतलब ये है कि अगर रिपीटेटिव है मामला, तो फिर नयापन जो होगा उसके खिलाफ एक इंटरनल स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस होगी, इंटरनली एक मैकेनिज्म होगा जो रिपीटेशन का जो तरीका होगा वो उसको रेजिस्ट करेगा। और अगर कोई चेंज आएगी भी तो अंडर द कंडीशन ऑफ रिपीटेटिव मैकेनिज्म ही आएगी। तो जब हम ये आर्ट और लिटरेचर और पब्लिक प्लेसेस और अपने स्टूडेंट्स के अंदर जब रिपीटेशन को कंडेम कर रहे होते हैं, तो हमें यही नहीं पता होता अनकॉन्शियसली हम किस चीज़ की जड़ों को काट रहे हैं, किस चीज़ की जड़ों को काट रहे हैं। मसलन आप जब नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं, रिपीटेशन है ना भाई, रमज़ान में आप हर साल रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमारे एक दोस्त थे वो लेफ्ट के थे, लेफ्टिस्ट थे, तो वो एक बार उन्होंने रोज़ा रखते थे वो, क्यों? क्योंकि फैमिली उनकी रिलीजियस थी, लेकिन ये लेफ्ट के हो गए थे, लेकिन चूंकि ट्रेडिशन मजहबी था इसलिए रोज़ा रखते थे, रिवायती माशरे से आए थे तो रोज़ा सब तो रखा ही जाता था, रोज़ा रखते थे। तो उनके उनसे भी एक बड़े दोस्त थे यहाँ कराची, जब आए तो यहाँ पर उन्होंने, उनके जो लेफ्टिस्ट दोस्त थे उन्होंने कहा भाई तुम तो लेफ्टिस्ट हो फिर तुम रोज़ा क्यों रखते हो? तो कहा भाई रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि गरीब लोगों का एहसास हो, इगैलिटेरियनिज्म का पता है। उन्होंने मार्क्सिस्ट वैल्यू से उसको हमांग कर लिया, किसी तरह इंटेलिजेंट भी थे। तो उसने कहा अच्छा देखो मसला ये है कि जब रोज़े का बुनियादी मकसद क्या है, बुनियादी मकसद ये है कि एहसास होना। तो वो उन्होंने कहा भाई अब तुम्हें एहसास हो गया भूख का, प्यास होगा, हाँ एहसास हो गया, है ना, बस जब एहसास हो गया अब खाना तुम खा सकते हो। तो उन्होंने दोपहर में 2 बजे बिरयानी खाई, एहसास होने लगे, क्योंकि एहसास हो गया ना, एहसास हो गया, अल्लाह को भी पता चल गया, तुम्हें भी पता चल गया, माशरे को भी पता चल गया, अब तुम खाना खा लो, क्योंकि एहसास है ना असल चीज़। तो ये रिपीट करना रोज रोज रिपीट करना, एक बार तुमने रोज़ा रख लिया बस ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे रमज़ान रोज़े से फारिग हो गए, सिर्फ एहसास कर लेते थोड़ी देर के लिए और फिर खाना खा लेते। माँ बाप के साथ सैरी करके आए थे फिर यहीं घूमते रहते थे, अपना वो कायदा कौन सी इकबाल लाइब्रेरी में घूमते रहते, फिर एहसास के साथ इफ्तार कर लेते थे। माँ बाप को आज तक नहीं पता चला, इंतकाल भी हो गया माँ का, कि हमारे बच्चे ने एहसास हो जाने के बाद कभी रोज़ा नहीं रखा, समझे, और गरीबों के लिए भी कुछ नहीं किया, सिर्फ एहसास एहसास हो गया। तो रिपीटेशन जो होता है उसकी जो उसको वो है इस वक्त एट थ्रेट, समझे। तो जैसे आपने देखा होगा पूरी लिंग्विस्टिक डायनामिक्स डेवलप हो गई है अगेंस्ट रिपीटेशन, रिपीटेशन के खिलाफ पूरी डिस्कोर्स मौजूद है, जो गैर महसूस तरीके से उर्दू अदब में, ड्रामे में, लिटरेचर में, क्लास के अंदर, मीडिया के अंदर, एवरीथिंग, यानी कि आपको कुछ नया देखना है, ये वैल्यू है। यानी कि ड्रामा बनाने वाला तुम्हें कुछ नया दिखाने के लिए ऐसे ऐसे ड्रामे बना रहा है कि आप हैरान रहते हैं कि ये कौन सा रिश्ता है भाई। यानी कि पाकिस्तानी माशरे में अगर तुमने रिवायती ड्रामे बनाते रहे तो उसमें रिपीटेशन आ जाए, लिहाजा क्या करो, रिश्ते अलग अलग कर दो, रिश्तों के वो तरीके जिसमें नयापन हो, अचंबा अचंभे में पड़ जाए आप कि भाई ये, कुछ लोग ये सोचते हैं पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वह, लेकिन बुनियादी तौर पर डायरेक्टर चाहता है कि तुम नएपन का शिकार हो जाओ। लेकिन सवाल ये कि तुम नएपन का शिकार हो जाओ तो उससे क्या फायदा, इससे वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नएपन में दाखिल करना चाह रहा है आपको, क्या हो गया उसको। वो तुम्हें नएपन में अगर दाखिल करेगा तो ज्यादा लोग इंगेज हो जाएंगे, नयापन तुम्हें इंगेज कर लेता है, इंगेजमेंट इन इट सेल्फ अच्छी थोड़ी होती है। अगर फर्ज किया कि रोड के ऊपर खड़े हो गए, एक औरत बहन माँ की गालियाँ बकनी शुरू कर दे सब लोगों को, है तो इंगेज कर लेगी ना वो सब लोगों को। तो इंगेज अगर लोग सारे लोग हो गए तो ये कोई अच्छी बात हो रही है क्या, हमेशा लोग अच्छाई की तरफ इंगेज होते हैं क्या। एक औरत है जिसको मैं काफ़ी अर्से देख रहा हूँ, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में बंदू खान है ना, वहाँ आ जाती है, सही, तैयार हो गए पूरे मेकअप वेकअप करके वो आ जाती है, और जो तिक्के लगा रहा होता है ना उसको गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर देती है जोर जोर से। वहाँ लोग अपने बहन माँ के साथ बैठ कर खाना खा रहे, रोड वो है ना, गाड़ी देगी कह रही जल्दी से मुझे दे दे तिक्के वरना वो अशर करूँगी तेरा, तो जल्दी जल्दी तिक्के डाल के उनको दे देता लपेट मुफ्त में, और वो हंसती भी चली जाती कई दिनों से। जब भी वो आते हैं ना कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, इंतजार करते हैं अभी आए अभी गाली बकेगी। अब वो बेचारे जो हैं तिक्के कबाब वाले एक तैयार रखते हैं, नहीं मुझे पता, मेरा ख्याल है कुछ खास दिन है जिनमें वो आती है भत्ता लेने, जैसे ही वो आती है ना कपड़े इंतहाई बेहुदा पहने होते हैं उसने, और सब डर रहे होते हैं उससे कि अब ये आई और इसने शुरू फौरन दे ले दिया अपना कबाब पराठा, कहते ठीक हो गया, ठीक है ठीक कर दिया मैंने। तो इंगेज हो जाना इन इट सेल्फ क्या कोई अच्छी बात होती है, इंगेज हो जाना, इंगेज होना इन इट, तो इंगेजमेंट के साथ कोई इंटरेस्ट होगा ना किसी का, मतलब कोई आपको क्यों इंगेज करे, मुझे कोई क्यों इंगेज करे, अगर मेरे इंगेज होने से उसका इंटरेस्ट है। जैसे तुमने पता नहीं वो खोला हो, अगर याहू वगैरह तुमने खोला हो तो उसके अंदर एक आता रहता है, एक कार्टून आता है कि एक बच्चा है उसके हाथ के अंदर कील घुसी हुई और वो रो रहा है, और माउस जो है उससे एक एक प्लास है जिससे आप उसका वो निकाल सकते। तो आप अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो बच्चे के आंख में आंसू बार बार आ रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? इंगेज कर रहा है। अब आपने कहा यार इसके बेचारे के कांटा चुभ गया, मैं ऐसा करता हूँ निकाल देता हूँ, जैसे कांटा धर 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 साइड्स खुलनी शुरू हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर वो तुम्हें इंगेज करके तुमसे क्लिक पे क्लिक करवाना चाह रहा है। जैसे ही क्लिक कराएगा उसका एक हिस्सा आ जाएगा, उसके उसके अकाउंट में कुछ पैसे मुंतकिल हो गए, है ना भाई? तो इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इंगेजमेंट। अगर तुम रोज एक ही तरह का याहू पेज खुलता रहे तो तुम इंगेज नहीं होगे। इससे ये थोड़ी इम्प्लाय होता है कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो। बात समझ में आ रही है भाई? तो पहली बात याद रखो कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती है ना वो रिपीटेशन पे खड़ी हुई होती है। फैमिली के अंदर रिपीटेशन होती है, फैमिली लाइफ में एक रिपीटेटिव फैमिली लाइफ होती है। रिलीजन के अंदर जब पूरी इबादत में रिपीटेशन होता है, अहादीस में जब तुमने ये जो बात सुनी है, हाँ मैंने उन साहब को पढ़ा लेकिन उसमें कोई नई बात तो है नहीं। सुना इस तरह के जो आलिमाना बातें बड़ी जाहिलाना अंदाज में लोग कर रहे थे, हाँ मैंने पढ़ा मौजूदी को लेकिन उसमें कोई नई बात तो है नहीं। अबे नई बात क्या? नई बात क्या? नई बात चाहिए तुम्हें? नहीं, तुम्हें पैदा हो के 30 साल हो गए, ये पुरानी हो गई ना बात, तो इररिलेवेंट हो गई क्या? मर जाओ तुम जाके, पूरा 30 साल पुराना हो गया। रोज अपना चेहरा देखते हो, वही 30 साल पुराने हो गए ना, तो फिर तुम क्या करो अपने साथ? ये हकीकत पुरानी होने के बाद इररिलेवेंट हो गई क्या? ये हकीकत इररिलेवेंट हो गई ये नहीं, कोई चीज़ पुरानी हो जाए तो इररिलेवेंट हो जाती है। तो कहने भाई इस्लाम कोई नई बात नहीं है ये, हाँ ये जो किताब, हाँ देखिए आपने, हाँ उसमें नयापन है, एक नयापन किताब में नयापन जो होता है वो करता है तुम्हें इंगेज। अगर तुम्हारी किताब में नयापन नहीं होगा वो पब्लिश नहीं होगी भाई। किताब में नयापन नहीं होगा तो पब्लिश नहीं होगी, ड्रामे में नयापन होगा तो पब्लिश नहीं होगी, गाने में नयापन होगा तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, अगर टीचर में नयापन होगा तो लोग वो यानी कि लेंगे नहीं उसकी क्लासेस। रिपीटेशन जो है एक अफसोसनाक चीज़ है। जो चीज़ वैल्यूबल है वो है नॉवल्टी, स्पॉन्टेनिटी, कंटिंजेंसी एंड फ्रीडम। तो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ पे जो अटैक होता है वो बुनियादी तौर पर इस बुनियाद पर नहीं होता कि इस ये आज़ादी नहीं देते, ये अटैक नहीं होता कि ये, इसमें अटैक ये होता है कि नयापन नहीं है। तो आपको इस्लाम वही चाहिए, नया इस्लाम चाहिए, आपको पाकिस्तान वही चाहिए, नया पाकिस्तान चाहिए, आपको माँ बाप के साथ जो फैमिली लाइफ है वही चाहिए लेकिन नयापन चाहिए, आपको जो है ज़िंदगी की लज्जतें चाहिए, नई लज्जतें चाहिए। तो इशू ये है कि जो रिपीटेशन है उसके ऊपर जब आप अटैक करते हैं तो बुनियादी तौर पर आप अपनी पूरी वैल्यूज़ के ऊपर अटैक करते हैं। बुनियादी तौर पर आप उस ऑर्डर को अटैक करते हैं जो ऑर्डर बुनियादी तौर पर एक ऐसे माशरे से निकला है जो तवातुर के साथ की जाने वाली तकलीद से निकला है। आपने सुना होगा इश्तिहाद, भाई इश्तिहाद की ज़रूरत है, भाई इश्तिहाद की ज़रूरत है। इश्तिहाद जो होता है उसके बारे में उलमा कहते हैं कि इश्तिहाद का मतलब होता है जो तकलीद को ज़िंदा करे, उसे कहते हैं इश्तिहाद। लेकिन आप इसी बात पे इश्तिहाद करना चाह रहे हैं कि तकलीद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसी बात पर आप इश्तिहाद कर रहे हैं कि माखजात कानून क्या है, इसी पे आप इश्तिहाद अगर कर दोगे तो इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसा दरीचा खोलोगे जिसके बाद इश्तिहाद की ज़रूरत ही नहीं है। इश्तिहाद की आपको ज़रूरत इसलिए कि किसी चीज़ के साथ आप उसको कंसिस्टेंट बना रहे हो ना, किसको कंसिस्टेंट बना रहे हो, किस चीज़ के साथ? जो नॉवल्टी ऑफ द लाइफ है दैट हैज़ बीन इमर्ज ड्यू टू द प्रैक्टिसेस ऑफ of those communities which are not intrinsically religious या intrinsically Islamic, उनके पास से जो life form आ रही है उसको आप compatible बनाना चाहते हो Islam से या Islam को compatible बनाना चाहते हो उनके साथ. तो जो traditional societies हैं उनका dilemma ये है कि उसके अंदर ये बात जड़ पकड़ गई कि यहाँ पर repetition है. रिपीटेशन की बुनियाद पर नए रंगीय ख्याल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर लोगों को इंगेज नहीं किया जा पा रहा. चूंकि लोगों को इंगेज नहीं किया जा पा रहा, लिहाजा जिस तरह गाने बदल जाते हैं, जिस तरह कॉम्पोजिशन बदल जाती है, जिस तरह लिटरेचर के पैटर्न बदल जाते हैं, जिस तरह पोइट्री के पैटर्न और मजामीन बदल जाते हैं, इसे इस्लाम को भी बदलो, इस्लाम के मजामीन को भी बदलो, इबादात को भी बदलो. आपका आपके सामने, मेरे सामने कराची के अंदर पता नहीं कितने लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने कुर्बानी करनी छोड़ दी. वो कहते हैं भाई ये क्या बात है जानवर को मार रहे हैं, तो मैं तो कुर्बानी के पैसे जाके दे आता हूँ एडी के अंदर, हाँ गोश्त खाने की जरूरत. और इबादत का मतलब वो समझते हैं अपने ऊपर जुल्म करना. इबादत का मतलब ही होता है अपने अपने आप को तकलीफ में डालना. खुशी मनाना इबादत नहीं हो सकती. खुशी मना रहे हो ना आप खुशी मना लो, नहीं खुशी मनाना इबादत का मतलब होता है अपने आप को तकलीफ में डालना. तो ये क्या बात हुई, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं हो रही, गाय ले आए काट के सब लोग खा गए, तो इसमें तो तकलीफ चूंकि हुई नहीं, लिहाजा मैं खुद भूखा मरता रहूंगा और ले आके पैसे दे दूंगा आपको इस सत्तारी को. तो वो जो पैसे तुमने दिए वो तो ठीक है तुमने दे दिए, लेकिन वो कुर्बानी तो नहीं हुई अय्याम नहर में, तुमने कुर्बानी नहीं की, सही है. और दूसरा आर्ग्यूमेंट उनका ये होता है कि भाई इन्हीं तीन दिनों में क्यों की जाए, सही है, क्योंकि बाकी लोगों ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है अय्याम नहर में करना. तो इमाम अबू हनीफा नहीं कहा है, तो भाई बाकी ने तो नहीं कहा लिहाजा अय्याम नहर में. तो उनको भी मैं देख रहा हूँ कम अज़ कम 15 साल से, तो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ कि अय्याम नहर में नहीं, कुर्बानी तो करेंगे इन्ना आदेना कल का उसर की वजह से, लेकिन अय्याम नहर में क्यों करें मखसूस करके नहीं. उन्होंने 15 साल से देख रहा हूँ आज तक नहीं की. और मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था, हालांकि मेरी उम्र उस वक्त कम थी, मैंने कहा था जो इस दिन नहीं करेगा ना उसको तौफीक भी नहीं होगी भाई, क्योंकि ट्रेडिशन के अंदर जो होता है ना वही ठीक होता है, जो ट्रेडिशन के बाहर निकल जाता है उसको तौफीक से महरूम हो जाता है. तो तुम कभी नहीं करोगे अय्याम नहर में नहीं कर रहे तो उस दिन कब करोगे, तुम्हें तौफीक ही नहीं होगी. तो बताने का मतलब ये है कि आप कहते हैं कोई नयापन, नयापन आप कहते हैं नहीं ये जानवरों को इस तरह भगाते हैं ये तो बड़ी गलत बात है. तो भाई आप ट्रेडिशन के अंदर अंदर आओगे और आके लोगों को बताओगे भाई इस तरह जानवर को नहीं भगाना चाहिए, इस तरह गंदे काम नहीं करने चाहिए, इस तरह नुमाइश नहीं करनी चाहिए, और अच्छी तरह सुन्नत की तरह कर दो कुर्बानी. तो आप जो है बुनियादी तौर पर नएपन, नयापन दिखाने के लिए, नए तरीके इख्तियार करने के लिए रिलीजन को एक एक नए पर्सपेक्टिव से पेश करने की कोशिश करें. अभी पाकिस्तान के अंदर जो एक कॉमन डिस्कोर्स है सबसे ज़्यादा उन लोगों को सुना बढ़ा जा रहा है जो नई बातें करते हैं रिलीजन से मुताबिक. जो बेचारे पुरानी बात करते हैं ओहो तो पुरानी बात हो गई. क्यों? क्योंकि तुमने उसका जहन ही वैसा बनाया. आपने स्कूल में उससे कहा रिपीटेशन अगर हुई तो मैं नंबर नहीं दूँगा, है, और माँ बाप ने कहा कि नयापन, और जो फैशन है उसने बताया कि नयापन, और जो बाल बनाने वाला जो हेयर डिज़ाइनर है वो कह रहा है नयापन. तो जब हर कोई नयापन, तो इबादत भी तो नए तरीके से हो जाए. कोई बात नहीं कि लोग कहें उल्टा लटक के नमाज पढ़ना चाहिए, ये भी नयापन है. हर चीज़ अल्लाह की है, हर रुख अल्लाह का, अल्लाह हर तरफ है. तो उल्टा लटक के आप इबादत कर लो, उससे ये होगा कि पेट के मसल्स भी बन जाएंगे, स्टमक भी तुम्हारा बन जाएगा, और जो है एक्सरसाइज भी हो जाएगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और ये कि सारा खून जो है सर की तरफ हो जाएगा. यही यही आर्गुमेंट है सजदे के बाद, सजदे की वजह से सर की तरफ रुख हो जाता है तो कैरोटिड लेबरिन पे अच्छा असर पड़ता है, उस एनर्जी में इंसान बहुत हेल्दी हो जाता है, आँखें रोशन हो जाती है. तो उसने इस पे और खुद इख्तियारी इश्तिहाद इस्तेमाल करके, मैं पूरा ही क्यों ना लटक जाऊँ, पूरा लटक के मैं सजदा करके दिखाऊँ क्या सजदा होगा. उससे ये होगा कि मेरे योगा भी हो जाएगा, योगा का योगा, इबादत की इबादत, अल्लाह भी खुश होगा, क्या नई तरीके से नमाज पढ़ी ही आयो मौलवी धड़ाकेदार। तो उनका जो तरीक़ा होगा वो, अगर फ़र्ज करो कि दुनिया कन्फ्यूजस कहता है कि हर इंसान को उसके हिस्से के बेवकूफ़ मिल जाते हैं, आप कितनी चंपूगिरी की बात करो, दो तीन लोगों के सर ज़रूर हिलेंगे, वो उस पॉसिबिलिटी को देखेंगे और सोचेंगे और कहेंगे क्या नई बात की, क्या नया ख्याल है। तो बुनियादी तौर पर ये जो नयापन होता है, अब हम इसके ऊपर इस पे अगर कोई और बात करनी है तो अभी कर लें, वरना फिर मैं ये बता रहा हूँ कि जो नयापन का डिस्कोर्स है इसका सोर्स क्या है। ये रिपीटेशन के जो खिलाफ इसकी जो बॉटम लाइन है वो क्या है, क्या ये रैशनल है या एस्थेटिकल है, ये अभी हम देखते हैं। देखें जो 20th सेंचुरी तक रिपीटेशन जो था वो प्रॉब्लमेटाइज नहीं हुआ था इस तरह जिस तरह अब हुआ है। क्यों? क्योंकि रैशनैलिटी जो डोमिनेट करती थी या मॉडर्निज्म जब डोमिनेट करता था तो रैशनैलिटी इज द डोमेन ऑफ नेसेसिटी। तो रैशनैलिटी ये क्लेम करती थी कि किसी चीज़ को करने का एक रैशनल तरीन तरीक़ा होता है। जब वो रैशनल तरीन तरीक़ा डिस्कवर हो जाता है तो दूसरे लोगों के लिए आसानी ये है कि वो डिस्कवर्ड रैशनल पैटर्न को फॉलो कर लें। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आप ठोकरें खाने से बचोगे और आप एफिशिएंटली वो काम कर लोगे, समझे? और जब वो रैशनल तरीन तरीक़ा आपके हाथ आ जाए तो फिर आप क्या करो, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो, इंस्टीट्यूशन में तब्दील कर इंसानों पे मुसल्लत करो। इसे कहते हैं डिस्कर्सिव प्रैक्टिस। डिस्कर्सिव प्रैक्टिस मसलन ये कि हमें अगर ये पता चल जाए कि बच्चे को तालीम देने का सबसे रैशनल तरीक़ा क्या है, तो आपने हज़ारों तरीक़े इख्तियार किए और फिर आपको पता चला अगर स्कूल बना दिया जाए तो ये सबसे एफिशिएंट तरीक़ा है बच्चे को तरबियत देने का, सबसे एफिशिएंट, सबसे रैशनल तरीक़ा। फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी ज़माने में इंसानों ने ये समझा कि स्कूल बना दें, ठीक है, तो बस जब ये तय हो जाएगा रैशनली तो उसके नतीजे हैवी इन्वेस्टमेंट करके आप पूरे दुनिया में या पूरे मुल्क में या पूरे इलाके में स्कूलों का एक जाल बिछा देंगे। और जो आपके माशरे का ज़हीन तरीन तबका होगा वो चूँकि इस बात पे कन्वेंस होगा कि अपनी मुस्तकबिल की जनरेशन की तरबियत और तालीम का इंतज़ाम इस इदारे के ज़रिए किया जाएगा, क्योंकि ये इदारा सबसे ज़्यादा रैशनल तरीक़ा है तालीम को अपनी फ्यूचर जनरेशन तक मुंतकिल करने का, लिहाजा वो इसके तहफ़ुज़ के लिए एक लिटरेचर भी पैदा कर देंगे, बड़ा पावरफुल होगा, उसकी सपोर्ट के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर भी खड़ा कर देंगे, उससे वायलेशन करने का एक पनिशमेंट का मैकेनिज़म भी, उसके ऊपर अमल करने के बेनिफिशरी ऑपरेटर्स भी पैदा कर देंगे। तो उसके नतीजे में इनहराफ मुमकिन नहीं रहेगा उससे। अब किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो स्कूल ना भेजे, या कोई खड़ा होकर पूछे क्या जस्टिफिकेशन है इस रिपीटेशन की, तो आप कहेंगे रिपीटेशन नहीं है भाई, हर बच्चा एक नया बच्चा होता है, हर बच्चा एक नए अंदाज में इसको पढ़ता है और हर नया बच्चा ये इल्म अपनी न्यू फ्यूचर जनरेशन में नए अंदाज में मुंतकिल करेगा, लेकिन पढ़ेगा इसी तरतीब से, इस तरतीब में एक परपेचुएशन है, एक रिपीटेशन है, लेकिन ये रिपीटेशन सबसे ज़्यादा चूँकि रैशनल है इस वजह से हमने इसको इख्तियार किया है और ये रिपीटेशन डिस्कर्सिव है। इससे कोई इनहराफ करेगा उसकी गर्दन तोड़ देंगे, तो किसी की जुर्रत नहीं होती। सब शायर, अदीब, अफसाना निगार, आलिम, जाहिल, औरत, मर्द, छक्के, सब ये समझते हैं यही है तरीक़ा सबसे ज़्यादा बेहतर। ये कन्विक्शन कहाँ से आती है? ये कन्विक्शन आती है द डोमिनेशन ऑफ मॉडर्न डिस्कर्सिव रीजन से. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनमें रिपीटेशन होती है. सही है? आप लोगों का क्या ख्याल है, ये जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर अपनी मर्जी से इंसान का कि बॉडी पे स्ट्रोक लगा सकते हैं या नहीं? कट जो लगाते हैं फिर कैसे लगाते हैं?
प्रोटोकॉल जो इनके, प्रोटोकॉल जो ऑलरेडी
एक तयशुदा मैनुअल होता है, सर्जिकल मैनुअल. उन सर्जिकल मैनुअल से आप इन्हेराफ नहीं कर सकते. क्यों? सवाल ये कि सर्जिकल मैनुअल से इन्हेराफ क्यों नहीं किया जाता, क्या वजह है? ठीक है, ये बिल्कुल सही है. लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर तुमने इसको फॉलो नहीं किया मैनुअल को तो पेशेंट की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी. नहीं, ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में प्रिजम्पशन क्या है? रैशनल है, ये तो मैंने बता दिया, कोई नई बात बता. और वो पनिश किया जाए, पनिश किया जाए, यानी कि बोर्ड बैठ जाए. लेकिन ये वजह नहीं है, एक और वजह है. एक और वजह क्या है इससे ज्यादा फंडामेंटल है? नहीं, वो तो बिल्कुल सही है. मैं कह रहा हूँ वो सब मुकल्लिदीन है, यही बता रहा हूँ. एफिशिएंट मेथड है. और भाई इसलिए किया जाता है कि मैनुअल मेथड ये प्रिज्यूम करता है कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं, इसलिए मैनुअल को फॉलो करना है. मैनुअल को फॉलो इसलिए करना है, हम सबके हार्ट एक जैसे ही होंगे. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम आइडेंटिटी के प्लेन पे एक जैसे हो. क्योंकि तुम हम सब एक जैसे हैं इसलिए हमारा इलाज भी एक जैसा होगा. हम लोग सब एक जैसे, तो हम सब के हार्ट का अगर वो ऑपरेशन कर रहा होगा तो जहाँ पर मेरी कोई वेन है वहीं पर हम सब की वेन्स होंगी. मैनुअल ये प्रिज्यूम करता है कि जिससे हम डील कर रहे हैं वो सब एक जैसे, और पूरी दुनिया मानती है कि फिजिकली हम सब एक जैसे ही हैं. फिजिकली चूँकि हम सब एक जैसे ही हैं, इस वजह से हम लोग सब को एक ही तरह ट्रीट किया जाना चाहिए. सवाल ये फिर हम डिफरेंट कब कहाँ हैं? जिस्म की सतह पर हम सब एक जैसे, तो वहाँ पर हम मुकल्लिद बन गए. फिजिकली तमाम डॉक्टर तमाम पेशेंट को एक जैसा समझकर ही ट्रीट करते. फर्ज के एक दवा जब बनती है तो एक दवा तो नहीं बनती ना, करोड़ों अरबों उसके सैंपल बनते हैं. किस बुनियाद पे बन रहे हैं? इस बुनियाद पे बन रहे हैं कि अगर वो इस पे अमल करेगी तो इस पे भी करेगी, सब पे करेगी. क्यों? क्योंकि सब एक जैसे हैं. सब चूंकि एक जैसे हैं इसे रिपीटेशन की जा सकती है. रिपीटेशन होनी चाहिए. अगर फर्ज है कोई आदमी कहे कि भाई डॉक्टर जो है डॉक्टर इलाज कर ही नहीं सकता, अगर वो ये प्रिज्यूम कर ले कि हर आदमी एक दूसरे से मुख्तलिफ है. फर्ज है कोई कहे मैं कैसे इसका पेट चीरूं, कहीं इसका हार्ट खोपड़ी में हुआ तो, या इसकी इसका भेजा घुटनों में हुआ तो, या जूतियों में हुआ तो, जूतियाँ तो है नहीं, ऑपरेट किस चीज़ से हुआ? तो लोग कहें नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक जैसे होते, सब एक जैसे. अभी हम एक बच्चा था मासी का, वो गिर गया, उसका हाथ यहाँ से फ्रैक्चर हो गया. अब वो उसको लेके गांव जा रही थी, तो मैं उसको कहा भाई डॉक्टर के पास ले जाते हैं, पहले उसको दिखा. डॉक्टर के पास ले गया, उसने एक्सरे कराया, एक्सरे करने और उसने कहा देखें यहाँ से हुआ है, मैं इसको खींच के बिठा दूँगा और फिर मैं प्लास्टर करूँगा. अच्छा अरे कैसे कैसे क्या खींच के बिठा दूँ, बहुत दर्द होगा। बोले कुछ नहीं, बच्चा बच्चे का हार्ट ही हार्ट फेल ही ना हो जाए। बोले अरे कुछ नहीं, आप लोग जाए इसकी माँ को ले जाए, आप खड़े रहें। उसने घूम घूर के खींचा, बच्चा चीखा मैं पसीने छूट गए और रोशनी बहुत सब बढ़ गई आँखों के आगे, तारे ना रही हो, बच्चे की चीखों पुकार सुन, पसीने छूट गए। उसने यूँ किया, बच्चा चीखा जा रहा, उसको कुछ हो नहीं रहा। सूरी साहब अगर इस तरह हम बच्चे के चीखने डरे ना, बच्चे का हाथ जाया होगा। और अगर ये आप किसी बदमाश के पास चले जाते हैं ना, वो कहता है ऑपरेशन करूंगा इसका, बच्चे के चक्कर में पैसे बनाओ, क्यों मैं इसकी शादी करूँ, कुछ नहीं हुआ, सेट हो। वो थोड़ी देर उसको पट्टी भी बांध दी और फिर उसी हाथ में बच्चे को जूस भी पकड़ा दिया। अब भी थोड़ी देर पहले उसमें चीखे मार रहा था उसी हाथ में। दे भाई, ये मजदूरों के बच्चे बड़े सॉलिड होते हैं, ये कुछ नहीं पट्टी वाले उसी जूस पी रहा है। बोले कभी जिंदगी में इसको जूस नहीं मिला हुआ, आज हाथ टूटा है जूस मिला बेचारे। तो वो ये कॉन्फिडेंस जो है इस बुनियाद पे है कि थोड़ा चीखेगा लेकिन ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि सब एक जैसे होता है, सबकी हड्डियाँ एक जैसी होती है। अगर आपने ये समझा कि डिफरेंस, तो आप इलाज कर ही नहीं सकते। तो फिजिशियन जो है वो किस प्रिजम्पशन पे खड़ा है, सब एक जैसे। तो क्या फिजिशियंस रिपीटेशन को वैल्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैनुअल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कर रहे हैं कि किसी तरह उनको ये पता चल गया इंटरनली इंसान कैसा होता है, जिंदा इंसान कैसा होता है, मुर्दा इंसान कैसा होता है, हड्डियाँ कहाँ पे होती हैं, वेन कहाँ पे होती है, हार्ट कैसा होता है, कहाँ पर क्या होता है, ये उसको पता चल गया। उसको वो इफेक्टिवली इस्तेमाल करते चले जा रहा है और इलाज कर रहा है। इसको आप हर फील्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जियोलॉजी में, जियोग्राफी में है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही रिपीटेशन। क्यों? क्योंकि साइंस खड़ी हुई है एक प्रिंसिपल के ऊपर, न्यूटोनियन साइंस खड़ी हुई है लॉ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। अगर लॉ यूनिफॉर्म है नेचर तो रिपीटेशन तो होगा ना भाई, तो मैं रिपीटेशन को डिस्करेज कैसे करूँ, डिसवैल्यू कैसे करूँ। अगर रिपीटेशन है और यूनिफॉर्मिटी है तो क्या इसमें डाइवर्सिटी पैदा की जा सकती है? वो कहते हैं हाँ पैदा की जा सकती है, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, ऊपर से चीज़ नीचे गिरेगी, लेकिन आप पैराशूट भी बना सकते हो, ग्लाइडर भी बना सकते हो, ये भी। तो ये कहना कि अगर रिपीटेशन होती है और यूनिफॉर्मिटी होती है तो उसमें नैरंगी नहीं होती, झूठी बात है ना। ये तो तुम्हारे सामने रोजाना इसकी नफी होते हुए देख। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है हर चीज़ में से गुजर जाती हैं तो ये एक यूनिफॉर्मिटी है, तो इसके अंदर क्या नारंगी ख्याल पैदा नहीं हो सकता क्या? क्या साइंस ने पैदा नहीं करके दिखाई दी? एक ही शतरंज के अंदर दोनों तरह के मोहरे की चालें तय हैं पहले से कि नहीं, प्यादा ऐसे चलेगा, घोड़ा ऐसे चलेगा, बादशाह ऐसे चलेगा, वजीर ऐसे चलेगा, तय है ना, सारी चालें पहले से तय है ना, सारी मूवमेंट पहले तय। उसमें भी एक हार जाता है एक जीत जाता है, कैसे हार गया भाई, दोनों को पता है ना, वो सब कुछ पहले से तय था ना, तो एक हार कैसे गया? एजे आयरी कहेगा कि फ्रीडम निकल कर आती है उसमें से, पैटर्न के अंदर से निकल के आती है। अब आप कहो नहीं मैं पहले पैटर्न को डिस्ट्रॉय करूंगा, आप अपना ऐसा करो पैटर्न को की छुट्टी करो फिर फ्रीडम की पॉसिबिलिटी, वरना फ्रीडम कैसे होगी पॉसिबल। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने इर्द गिर्द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और डिस्कर्सिव रीजन को अंडरस्टैंड किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है अपने इर्द गिर्द जो रिपीटेशन हो रहा है, हेगेमोनियस मैकेनिज्म ऑफ रिपीटेशन जो आपके ऊपर मुसल्लत है, आपको उसका इदराक नहीं, और आपको रिपीटेशन नज़र आ रहा है रिलीजन और ट्रेडिशन के अंदर और उलमा के पीछे और ट्रेडिशनल फोर्सेस के पीछे आप लट लेके दौड़ते हो गए, हमें हमें ہمارے ساتھ یکسانیت کی طرف لے جا رہا ہے ہمیں, یکسانیت کی طرف لے گیا. ارے بھائی تو تم بتا دو کون سا نیا پن پیدا کر دیا تم نے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ریپیٹیشن کے اوپر جو امپیکٹ تھا یہ ملٹیپلائی ہوا ہے ڈسکرسیو ریزن کے انسٹیٹیوشنلائزیشن کے بعد جو 17th century سے 20th century تک ہوئی ہے بہت ہی کمپریہینسولی. تو یہ جو ڈفرینس کا ڈسکورس ہے یہ اٹ واز ناٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو, اٹ از ناٹ اگینسٹ ریلیجن ٹیکنیکلی, اٹ واز اگینسٹ ماڈرن ڈسکرسیو پریکٹس. بنیادی طور پر یہ سارا جو نئے پن کا ڈسکورس ہے نا یہ پوسٹ ماڈرن ہے, ایگزسٹینشلسٹ ہے, فینامنالوجسٹ ہے, یا ڈی کنسٹرکشنسٹ ہے, یا پوز اسٹرکچرلسٹ ہے. تو یہاں جو ہمارے سو کالڈ انٹیلیجنشیا ریپیٹیشن کے تھیسس کو لے کر ریلیجن کو کنڈیم کرتی ہے اور ٹریڈیشن کو کنڈیم کرتی ہے, اس کا مطلب ہے اور افرم کس کو کر رہی ہے؟ ماڈرنزم. ارے اس کے اوپر کریٹیک ہے بھائی, وہ کچھ تمہیں پتا تو ہے نہیں. حیوانوں کی طرح تم نے ایک چیز پڑھ لی اور لا کے معاشرے کے اوپر مسلط کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ بےچارے علماء کو یا اپنے ٹریڈیشنلسٹوں کو کچھ پتا نہیں ہے کیا اعتراض کر رہے ہیں. کہتے ہیں انگریزی میں باتیں ہو رہی ہیں, کچھ نہ کچھ صحیح ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ ٹھیک ہی ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ بھائی کہ وہ جو اٹیک وہ جو جس بنیاد پر وہ پورا ڈسکورس کھڑا ہوا ہے وہ تو ماڈرنزم کی کریٹیک کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اٹ واز اے پوسٹ ماڈرن کریٹیک اگینسٹ ماڈرن ڈسکرسیو پریکٹسز. وہ ہم الگ سے دیکھیں گے. ابھی ہم کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. ابھی آج جو ہم نے بات کی ہے ابھی تک وہ کی ہے ریپیٹیشن کے اوپر. کیا ہم یہ بات یہاں پر کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں ہر سطح کے اوپر ریپیٹیشن کو کنڈیم کیا جاتا ہے. مائیں تک یہ پسند کرتی ہیں کہ نہیں پچھلی عید پہ تو یہ والا آپ نے شلوار نہیں پہنا, اس میں یہ پہنے. جمعۃ الوداع میں آپ نے یہ پہنا اور عید والے دن آپ یہ پہنے. اچھا کریں, اچھا ایسا کریں, اس کی شلوار اس کے کرتے کے ساتھ اور اس کا کرتا اس کی شلوار کے ساتھ پہنے, اور نماز پڑھتے میں میری چپل پہن کے چلے جائیں, اور یا مسجد جاتے ہوئے جو ہے واش روم کی چپل پہن کے چلے جائیں, کوئی چوری نہ کرے, اور پھر گھر آ کے یہ نئی چپل پہن لیے رشتہ داروں میں جاتے ہوئے. ایسا ہوتا ہے نا میرے ساتھ کہ مسجد جاتے ہوئے واش روم کی چپل پہن کے چلے جائیں تاکہ کوئی لے بھی جائے تو آپ کو خوشی ہو, اچھا ہوا واش روم کی ہمارے واش روم کی چپل لے کے چلے, ایک سکون ملے گا کہ ہم نے کیسا بیوقوف بنا, کیسا بیوقوف بنا. اور پھر آگے نئی اپنی ہش پپی اس کی چپل پہن کے رشتے داروں کے پاس چلے گئے. ہاں بھائی, تو یہ صحیح بات ہے کہ ریپیٹیشن کلچرلی انگرینڈ کر چکا ہے. یہ کلچرل جو پرولیفریشن ہے یا ویلیو کی پرولیفریشن ہے یہ ایک خاص قسم کی ویٹ رکھتی ہے, کنوینسنگ لگتی ہے. اٹریک, آپ کو پتہ ہے اسکولوں کے اندر ریپیٹیشن کو بچانے کے لیے وہ کرتے یہ ہیں کہ ایک بچہ جب ایک دوسری کلاس میں آتا ہے نا سارے کلاس فیلوز کو بدل دیتے ہیں, سارے سیکشنز کے بچوں کو شفل کر دیتے ہیں. پتہ ہی بات آپ لوگوں کو, اچھے جو اسکول سو کالڈ اچھے اسکول ہیں تاکہ کسی بچے سے اس کی دوستی نہ ہو. کیوں دوستی ہو جائے گی تو دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے, چیٹنگیں کریں گے, مل کے ماریں گے بچوں, لہٰذا ہر بچہ چھڑا چھاٹ رہے بھیڑیے کی طرح, بھیڑیا بناتا ہے اس کو, بھیڑیا جھنڈ سے الگ جو بھیڑیا ہوتا ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے اور اکیلا ہے, لہذا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے, ہمیشہ. جھنڈ سے الگ جو بھیڑیا ہوتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, صبر نہیں کرتا, آرام نہیں کرتا, اور جو اس کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ریسٹ لیسنیس اس کی ڈیفائننگ کرتی ہے. اور جب وہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو ہمیشہ غصے میں ہوتا ہے, وہ اپنے کئی گنا زیادہ جانور بڑے جانور پہ بھی حملہ کر دیتا ہے. चीतों पे तक हमला कर देता है अकेला, क्यों? क्योंकि वो उकताया हुआ होता है, झिंझलाया हुआ होता है, एग्रेसिव होता है, जबकि वो झुंड में जब होता है तो उसे अपनी ताकत पे भरोसा होता है कि जब हमें चाहिए होगा शिकार कर लेंगे, कोई मसला नहीं, तो वो आराम भी करता है, सोता भी है, झुंड से अलग भी होता है, बहुत खतरनाक है। तो हम भेड़िए बना रहे हैं ना अपने बच्चों को, तो ये रिपीटेशन की बुनियाद पर हो रहा है कि आप रिपीट ना करो, फ्रेंडशिप को रिपीट ना करो, रिलेशनशिप को रिपीट ना करो, जुमले को रिपीट ना करो। उर्दू के जो आला ज़ौक रखने वाले लोग हैं, एक ही बात कही, कोई नया ख्याल पेश नहीं किया, सुभान अल्लाह, और जैसे कोई नया जाए जितना ही चंपूगिरी का वाह वाह आह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो नयापन होता है, नयापन जो होता है जिस माशरे को जन्म देगा उसमें तकलीफ की कोई वक़्त बचेगी? हर चीज़ तो आप बदल रहे हो और आप मुकल्लद आप रहो, कैसे भाई रहोगे मुकल्लद आप? इसमें भी कोई नयापन होना चाहिए। ये क्या बात है, हज हज का ये कौन सा तरीका है कि बात करते रहोगे? ये कौन सा हज, ये कौन सी नमाज, ये कौन सी तरावी, ये कौन सी सुन्नत में तवातुर होता है ना, होता है कि नहीं? तो सुन्नत पे अमल करना मुमकिन रहेगा कि ऐसे आदमी के जो नैरंगी ख्याल का फुगर हो और आपने उसकी तरबियत ही ऐसी की हो और उसको इस चीज़ को प्रॉब्लमटाइज ही ना किया गया हो और हर तरफ तो ये वैल्यू और आपने इसमें तुम वो फॉलोवर हो पैटर्न, ये कैसे होगा भाई? ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं फंक्शनल हो सकता। यार खालिद भाई ये एक मिनट, ये ज़रा आप उनसे बात कर लें, मैडम मुझे बहुत देर से फ़ोन कर रही है, वो ख़त्म हो गया ना, अभी अभी मैं इनसे क्वेश्चन ले लेता हूँ जब तक आप करें, हैं मिला दूँ? वो तकरीबन 2 बजे से मुझे फ़ोन कर रही है, उनको कुछ मशवरा करना। अभी अभी इसमें कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं।
सर जैसे हमारे कजन वगैरह छोटे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा इस तरह, तो उनको हम किस तरह स्कूलिंग में गाइड कर सकते हैं? जैसा मेरे 2-3 कजन थे, तो पहले गेम से बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अभी कुछ दिनों पहले वो हो गया कि पॉपुलर है कि आप मूवी अभी लोग पूछ नहीं इस तरह, अगर उन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी, कोई गिटारी शुरू कर दी, कोई उनको हम किस तरह गाइड करें?
सही है, नहीं देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कैसे कर सकते हैं, मैं ही बता रहा हूँ कि पहले तो हर चीज़ को पहले थियोरेटिकली ग्रैस्प करना ज़रूरी है। मसलन ये कि ये जो वैल्यू है डिफरेंस की, और डिफरेंस की वैल्यू ने अपने आप को आइडेंटिटी की वैल्यू के मुकाबले पे लाके खड़ा किया, तो आप अपनी आइडेंटिटी डिफाइन ही डिफरेंस की बुनियाद पर करें। आप देखें पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर पर्सन्स हैं, 50-50 साल के हैं, 50-50 साल के 16 साल के लड़कों की तरह स्पाइक बना के बैठे हैं। क्या क्यों बैठे हैं? किस तरह का दिमाग है? क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? उसने अपना स्टाइल चेंज कर दिया, चेंज हो गया, और हालात के साथ वो अपने आप को ढाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न के ऊपर अगर एक ही मनहूस चेहरा बार 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 लोग देखेंगे ना तो उकता जाएंगे, उसको नया बनना है, नयापन उसमें लेके आएगा। अगर वो नयापन नहीं लेके आएगा अपनी अपीयरेंस में, अपने एक्सप्रेशन में, अपने एटीट्यूड में, तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, लोग उसे देखेंगे नहीं। लोग देखना चाहते हैं कुछ नया, सुना ही है आपने, कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ नया दिखा, कोई नई बात करें, कोई नया कुछ नया करके दिखा। तो जो नया करके दिखाने के ऊपर इंसिस्टेंस है, ये पे बैक हो रही है। ऐसे नहीं है कि लोग नयापन, नया जब हो जाता है तो वो बिकता ज़्यादा है, नई डिश ज़्यादा बिकती है, नया चेहरा ज़्यादा बिकता है, नई मॉडल ज़्यादा बिकती है, नया ड्रामा ज़्यादा बिकता है। अब पाकिस्तानियों ने जो है वो क्या कहते हैं, नई कहानी ज़्यादा बिकती है। ये जो है अपने क्या नाम इनका टर्किश ड्रामे ज़्यादा क्यों देखे जाते हैं, उनकी कहानियाँ अलग हैं, उनके मसाइल अलग हैं, तो नयापन आ गया इसलिए वो ज़्यादा बिक रहा हूँ। फिर वो खूबसूरत भी ज़्यादा है यूरोपियन, तो ये हमारी नीली पीली कौमों को ये गोरे लोग बड़े अच्छे लगते हैं। क्या गोरे भी मुसलमान भी इस्लाम वगैरह की बात करते हैं, खूबसूरत भी है, एक हमारे माठे बदसूरत लोग घिन आती है अपने लोगों से, तो अपने लोगों के ड्रामे ही देखने उन्होंने बनते हैं, हाँ तो उनके कपड़े भी नए लगते हैं, उनके स्टाइल भी नए लगते हैं, उनके चेहरा भी नया लगता है, तो वो जो नयापन है बिकता है। असल मसला ये, अगर बिके नहीं इस वैल्यू के साथ जो मार्केट है, मार्केट का सपोर्ट है, उसको हम न्यूट्रल समझते हैं। यानी कि स्कूलों के अंदर हम नए तरीके से सिखा रहे हैं, नया कुछ नया सिखा रहे हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा है, क्योंकि नया सिखा रहे हैं इसलिए फीस ज़्यादा ले रहे हैं, नया सिखा नई तरीके से सिखा रहे हैं, पहले ए बी सी डी आ बैकैड है, तो अच्छा नया तरीका इसलिए ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो नया नए चीज़ के पैसे ज़्यादा होते हैं, पुरानी चीज़ के पैसे कम होते हैं। जिस तरह होता है ना, पुरानी किताबें लेने जाते हैं, अरे भाई सस्ती दो ना, तो नई पुरानी है, पुराना मॉडल, तो बुनियादी तौर पर ये नेचुरली इमर्ज थोड़ी हुआ है। पुरानी टेक्नोलॉजी सस्ती होती है, नई टेक्नोलॉजी महंगी होती है, तो नई चीज़ महंगी होती है, नया ख्याल महंगा होता है, नया जिस्म महंगा होता है, नई बात महंगी होती है, सस्ती चीज़ होती है पुरानी, बेवकूफ इर्रेलेवेंट, या फिर बहुत पुरानी हो, बहुत ही पुरानी, वो बहुत महंगी होती है, बहुत पुरानी, जैसे नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, मैंने ये अभी इस्लामाबाद पाकिस्तान टूर पे गया था, तो वहाँ लोगों के साथ बैठ के बातें की मैंने, बहुत बातें, बहुत, तो मैं लोगों से पूछा नहीं नया पाकिस्तान तुम्हारे ख्याल में किस तरह का होगा अगर पाकिस्तान नया बन जाए, तो आम गांव का बंदा ये तो कहते हैं नया पाकिस्तान बुलेट ट्रेन होगी, हवाई जहाज़ होगा, ये सब नया नया पाकिस्तान। मैंने कहा भाई ये तो सारा पुराना है, अमेरिका वगैरह में सब जगह होता है ये, नहीं पाकिस्तान में तो नहीं होता है ना, पाकिस्तान में तो नहीं होता, हम भी जहाज़ में बैठ जाएंगे इस तरह। वो आदमी जो कश्मीर में एक बच्चा है, वो ये समझ रहा है जब नया पाकिस्तान बनेगा तो हमारे लिए जहाज़ में हम बैठ सकेंगे, बुलेट ट्रेन में हम बैठ सकेंगे, हम जो है केबल आ जाएगा हमारे यहाँ, हम भी फिल्में देख सकेंगे, हम भी ड्रामे देख सकेंगे, ये उसका ख्याल नया है। आप कुछ भी सोच रहे हो नया पाकिस्तान से मुराद, तो नया पाकिस्तान तो पुराना अमेरिका है ना, नया पाकिस्तान पुराना अमेरिका होगा ना, पुराना अमेरिका बनाना चाहते हो नए पाकिस्तान बनाना, तो कौन सा नया ख्याल तुमने सोच लिया, तो पुराना ख्याल है ना, इस तरह होता है पुराना। तो सवाल ये कि कायदे आज़म का बयान है, कायदे आज़म बेचारे मर खप गए, उनके टाइम गुजर गया, उनको क्या पता, कायदे आज़म तो पुराने ज़माने की गाड़ी में बैठते थे, अजीब गरीब से टोपी पहनते थे, इतने बड़े ढीले कपड़े पहनते थे, वो कौन सा अच्छे कपड़े, कायदे आज़म ऑब्सोलीट हो गए, लेकिन कायदे आज़म नया पाकिस्तान बनाना चाहते, वो नया पाकिस्तान बन नहीं सका, अब वो वाला पाकिस्तान हम बनाएंगे क्योंकि पुराना अमेरिका या पुराना यूरोप है, ये है ना नया। लेकिन ये बिकता है ख्याल, इसलिए चलता है, जो ख्याल बिकेगा वो चलेगा। तो अब अगर फर्ज किया आपने कहा रिलीजन को भी नया कर दो ताकि वो बिके, तो आप रिलीजन के अंदर नई नई इनोवेशन करके उसको बेचना शुरू कर दो, अगर तो वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए। यस
सर, मेरी बात ये कि जब जो पिटीशन है आज की पिटीशन कोई बात आज रिपीट हुई या कोई बात आज रिपीट हुआ, कोई वक्त ऐसा भी होगा कि जब वो पहली दफा किया गया, यानी कोई वक्त ऐसा भी था कि जब उस वक्त के लिए वो बात नहीं थी, वो अमल नया था। इसी तरह आज अगर कोई बात नहीं की जाए या कोई अमल नया किया जाए तो एन मुमकिन है कि फ्यूचर में जाके वो पिटीशन का हिस्सा बने। ट्रेडिशन का तो ट्रेडिशन और ये पिटीशन, इसकी दलील तो मुशरी ने मक्का ने भी दी थी कुरान के खिलाफ या रसूल के खिलाफ,
नहीं पहले पहले तो ये कि मैंने पहले ही चीज़ आपको बताई कि ट्रेडिशन जो होता है उसमें हमेशा इशू रिपीटेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रिपीटेशन ऑफ होम, किसको रिपीट करोगे तुम? तो जब आप ट्रेडिशन की बात करेंगे ना तो हमेशा एक अथॉरिटी के मुकाबले में दूसरी अथॉरिटी पेश करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदम से नहीं शुरू किया, ये जो हमारी बात है ना, जो आमतौर पर छेड़दानी में मैं आज उस पर बात कर ही देता हूँ, हमारे पास चूँकि टाइम है। मसलन देखें, हमारे यहाँ जो लोग रिलीजन को पेश करते हैं ना, इस्लाम को पेश करते हैं, तो उसको पेश करते हैं एक नई चीज़ के तौर पे, नई चीज़। और दूसरी चीज़ जो पेश करते हैं वो ये पेश करते हैं कि ये पॉपुलर आर्गूमेंट है कि जो मुसलमान जिन लोगों के बीच में आए वो वैशी और दरिंदे थे बिल्कुल, और फौरन फौरन एक एक दो चीज़ें बता देते थे। वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, नंबर वन। नंबर टू, वो जो थे आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे, और जो है वो खाने का बात तवाह कपड़े उतार के करते थे वगैरह वगैरह, अपनी रिश्ते महरमों से शादियां करते थे, इस तरह की बातें सब करते। और औरतों को बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट करते थे। और ये तो जो आदमी के जहन में नक्शा खींचता है, वो नक्शा खींचता है एक बिल्कुल वैशी और दरिंदों के बीच में प्रॉफिट मौजूद थे। ये एक स्टैटिस्टिकली सही तसव्वुर नहीं है, ये बहुत बड़ा बोहतान है उस माशरे के ऊपर जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने ऐसे ही सेलेक्ट नहीं किया था उन्हें, उनकी अंदर कुछ खसूसियात हैं। मैं बताता हूँ आपको चार खसूसियात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों के बीच में आए थे भाई, वो अकल से पैदल लोग नहीं थे, उनके अंदर पांच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन मौजूद थे, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल करंट्स थी उनके अंदर मौजूद। पहली करंट उनके पास थी जुडाइज़म की, जुडाइक ट्रेडिशन से बहुत अच्छी तरह अरब्स वाकिफ थे, क्योंकि अरब्स में जेंटाइल ज्यूज मौजूद थे, और जेंटाइल ज्यूज जो थे उनके पास बहुत तरह के उलूम मौजूद थे। उनके पास एस्ट्रोनॉमी थी, एस्ट्रोनॉमी जानते थे, वो नॉलेज ऑफ नंबर्स जानते, न्यूमरोलॉजी जानते थे, वो न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट्स थे, वो इल्मुल आदाद जानते थे, और एस्ट्रोलॉजी जानते थे, और तीसरा तौरात का इल्म था उनके पास, तौरात जानते थे वो, यानी कि उन्हें पता था प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट क्या करता है, कलामुल्लाह क्या होता है, अल्लाह की किताब क्या होती है, वर्ड ऑफ गॉड क्या होता है वगैरह वगैरह। उसमें उन्होंने तहरीफात कर रखी थी, लेकिन वो अकल से पैदल जाहिल वैशी दरिंदे नहीं थे वो, समझे भाई। इबादत भी करते थे वो अपनी, कोई ना कोई उनकी इबादत भी थी। दूसरा ट्रेडिशन था क्रिश्चियन ट्रेडिशन अरब्स के अंदर, जेंटाइल क्रिश्चियन थे, हज़रत ईसा के ज़माने के क्रिश्चियन थे, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे, जिनके पास बाइबल की नॉलेज थी, मोनेस्ट्रीज थी पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर। मोनेस्ट्रीज आप समझते हैं, मोनेस्ट्रीज का मतलब ये है कि जहाँ पर वो रूहानी तरबियत का इंतज़ाम करते थे उन लोगों का जो आगे जाके चर्च के साथ जुड़ने वाले थे, यानी कि उनकी तस्किए नफ्स की तरतीब का पूरा निज़ाम मौजूद था। पूरे अरब वर्ल्ड में मोनेस्ट्रीज बनाई हुई थी, जो सिर्फ खद्दर पहनते थे, खड़ावे पहनते थे, अय्याशी नहीं करते थे, सेक्स नहीं करते थे, वो भी मौजूद थे अरब्स के अंदर, ख़ास तौर पे मेसोपोटामिया में, इराक के अंदर बहुत पावरफुल ट्रेडिशन था उनका। तीसरा उनके अंदर जो था वो हनीफ, दीन हनीफ को मानने वाले थे, जो कहते थे एक खुदा है, लेकिन ये भी कहते थे कि उस एक खुदा को पुकारने के ये जो सारे तरीक़े हैं गलत हैं, और वो आवाज़ें मारते थे सहरा के अंदर जाके कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो फिर हम गुमराही मर जाएं। अल्लाह को पुकारने वाले लोग मौजूद है दीन हनीफ मानते थे। चौथे जो थे वो कुरैश थे, जो कि اپنے آبا و اجداد کی ٹریڈیشن کے اوپر چلتے تھے. اس ٹریڈیشن کی کچھ ویلیوز تھیں. اگر ان دنوں میں آپ کو جنگ نہیں لڑنی, بہت سارے لوگ اس کی پاسداری کرتے تھے, بہت سارے لوگ جو حرام جگہ وہاں پہ قتل نہیں کرتے تھے, بہت سارے ویلیوز ان کے پاس تھیں. جو پانچویں اور سب سے حیرت انگیز ہے کہ ان کے اندر اس سطح کے آرٹسٹ موجود تھے کہ وہ آرٹ کو ویلیو کر سکیں. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر کتنے, اس کراچی یونیورسٹی میں کتنے ایسے شاگرد ہوں گے جو کسی پوئٹری کو دیکھ کر طے کر سکیں کہ بڑی پوئٹری کس کی ہے. اردو ڈپارٹمنٹ کے پورے اسٹوڈنٹ کو لا کے کھڑا کر دیں اور لٹکا دیں بڑی پوئٹری, پڑھ نہیں سکیں گے پوری, ریڈ نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں ریڈ نہیں کر سکیں گے پوری پوئٹری. فیض کی بھی اگر پوری پوئٹری لگا دی آپ نے, ریڈ نہیں کر سکیں, کین ناٹ ایون ریڈ اٹ. اردو ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کی بات بتا رہا ہوں, اردو ڈپارٹمنٹ کی ٹیچرس نہیں ریڈ کر سکیں گے, ٹیچرس ریڈ نہیں کر سکیں گے اس کو. وہ اس سطح کا معاشرہ تھا کہ سبائے معلقہ کو ویلیو کر سکتا تھا. اس سطح کا یعنی کہ جب سویلائزیشن اپنے عروج پہ ہوتی ہے نا تب وہ پوئٹری کرتی ہے, اور ہائیلی ویلیوبل آدمی ہوتا تھا پوئٹ. پوئٹ ہائیلی ویلیوڈ مین ہوتا تھا اس سوسائٹی میں. جو ہم کہتے ہیں نا پیسے کے بھوکے تھے یہ وہ, پیسے کے بھوکے ہوں گے, پیسے کے بھوکے کون نہیں ہے یہاں پر, پوئٹ کو ویلیو کرتے تھے بھائی. وہ پوئٹ کو ویلیو کرنا مذاق ہے کیا؟ ایک آدمی نیا خیال پیش کر رہا ہے اور اس زبان میں پیش کر رہا ہے, آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. آپ کے معاشرے میں کرتا ہے کوئی پوئٹ کو ویلیو؟ جوتے مارتے ہیں پوئٹ کو, کتے سے زیادہ حیثیت نہیں ہے پوئٹ کی. وہ اس سوسائٹی کے اندر بھائی پوئٹ کو ویلیو کرتے تھے, اپنے سر پہ بٹھاتے تھے, اپنی محفلوں میں لا کے بٹھاتے تھے. دوسرا آپ کو یہ بتا دوں, عورتوں کو بند اپنا قتل کر دیتے تھے, عورتوں کو قتل کر دے, یہ بولتے بولتے ارے بھائی سب قتل کر دیتے تھے, کیا پاگل تھے کیا وہ لوگ؟ ایک سانس میں کہتے ہو 20-20, 50-50 بیویاں ہوتی تھیں, دوسری سانس میں کہتے ہو اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے. تو 20-20 بچیاں کہاں سے آتی تھیں ان کی, 50-50 شادیاں کیسے کرتے تھے بھائی, کہاں سے آتی تھیں عورتیں؟ اب کہتے ہیں وہ جو ہے وہ غلام بنا لیتے تھے. اچھا کتنے غلام بنا لیتے تھے, کون سی, ارے عرب ورلڈ سے باہر جا کے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں عربز نے بیفور اسلام, بتائیں اسٹیٹسٹیکلی بتائیں کہ ایجپٹ پہ حملہ کر دیا ہو کہیں کہیں کیا ہو عربز نے. تو پہلی بات ایک سانس میں آپ کہتے ہو 50-50 بیویاں ہوتی تھیں, پھر آپ کہتے ہو سب, ارے بھائی کسی نے دبا دی ہوگی اپنی بھی بچی بھی, معاف کر دو نا ان کو, سارے دیکھ گئے اس طرح کے. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں ہے کسی عورت کی جرت کہ اس کے باپ کو کوئی قتل کر دے تو جو سب سے بڑا دشمن ہو اس کو ایک آدمی کو بلا کے قتل کروا دے؟ ہے کسی عورت میں جرت اپنے باپ کی سینہ چری ہوئی لاش دیکھ کر رو فنا ہو جائے گی اس کی؟ شاید ہسٹیرک پیشنٹ ہو جائے, مریض ہے وہ, ہندہ تھی جس نے اپنے باپ کا کی لاش اٹھائی اور بعد میں کہا اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گی, گرا دوں گی اس کو. اور جس آدمی کو اس نے چیلنج کیا تھا وہ معمولی آدمی نہیں تھا, لائن آف ڈیزرٹ تھا بھائی, وہ حمزہ تھا, معمولی آدمی نہیں تھا جس کو دیکھ کے روح فنا ہو جاتے. ابو لہب کو جس نے تھپڑ مارا تھا, وہ آدمی کو اس نے کہا اس کو نہیں چھوڑوں گی, میرے باپ کو قتل کیا نا اس کو, پیغمبر کے سامنے بھی کھڑے ہو کے بولتی تھی, پیغمبر کے سامنے بھی کہا کہ بھائی پتہ نہیں کیا کسی نے کہا کہ بھائی بچوں کو پتہ نہیں کیا بچوں کو قتل, تو انہوں نے کہا آپ نے بھی تو میرے بچوں کو قتل کیا, پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص ان کی گرومنگ ہوئی ہوئی تھی عورتوں کی بھی, ایسے ہی نہیں حضرت خدیجہ جو ہے کھڑی ہو گئی تھی پراپرٹی کے سامنے, ایسے ہی نہیں ہندہ کھڑی ہو گئی, ایسے ہی نہیں عائشہ صدیقہ جو ہے تلوار لے کے کھڑی ہو گئی, ایسے ہی نہیں عبداللہ بن زبیر کی ماں نے عبداللہ بن زبیر کو تیار کیا. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو رویہ ہے نا عربز کے بارے میں بہت ہی سپرفیشل اور احمقانہ ہے. کرسچنز کہتے ہیں کہ پہلی صدی میں مسلمانوں نے جیسا کام کیا ہے ہم کبھی نہیں کر سکے. آپ کریڈٹ دو نا بھائی ان لوگوں کو, ان کے اندر یہ کیپیسٹی تھی. دوسری بات یہ کہ نیا پن نہیں تھا, وہ ٹریڈیشن جو حضرت ابراہیم کا ٹریڈیشن تھے ان کو چلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وہ ٹریڈیشن چلایا جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا. جس کے اندر ڈسکرمنیشن تھی یا جس کے اندر بدماشی تھی اس کو ختم کر دیا انہوں نے. تو پہلی بات تو یہ بالکل اینٹائی ٹریڈیشنل ایٹیچیوڈ نہیں تھا مسلمانوں کا. مسلمان ٹریڈیشن کو سمجھتے تھے, مسلمانوں نے ٹریڈیشن کی تطہیر کی ہے, ٹھیک کیا ان کو, ٹریڈیشن کو ابینڈن نہیں کیا مسلمانوں نے. مسلمانوں نے ٹریڈیشن کو ٹھیک کیا, ٹریڈیشن کے اندر داخل ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کیا سلیوری ختم, انہوں نے کہا سلیو کو ایسے رکھو, اس طرح کی کنڈیشن رہی کہ وہ سلیو گھر کا ہی فرد بن جاتا تھا. باندھی جو ہے تقریباً بیوی بن جاتی تھی ایونچولی. وہ کنڈیشن اپلائی کی کہ اس کے نتیجے میں وہ ٹریڈیشن اسلامائز ہو جائے اور اتھارٹی اسٹیبلش ہو جائے قرآن و سننے کی. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو ٹریڈیشن ان اٹ سیلف جو تھا وہ بالکل جو تھا وہ بالکل اسلام کوئی نئی بات, اسلام نئی بات نہیں کرتا بھائی. اسلام تواتر کے ساتھ اس کی طرف بلاتا ہے جس کی طرف سارے پیغمبروں نے بلایا. وہ کہتا ہے دیکھو تم نے ان کے ساتھ یہ 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 زیادتیاں کی ہیں, اب دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. اسلام نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جو حضرت عیسیٰ نے جس سے منع کیا, یا حضرت موسیٰ نے منع کیا, یا حضرت ابراہیم نے منع کیا, یا اسحاق نے منع کیا, یا یعقوب نے. اس کو کمپلیٹ کیا, اس ٹریڈیشن کو آگے بڑھایا, اس کو پرچ نہیں کیا. جس طرح ہمارے یہاں ٹریڈیشن کو ایک گندی چیز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ تواتر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. یہ رویہ ٹھیک رویہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابھی جو ہم نے بتایا ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پیغمبر کو جو لوگ کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کیا ہم اپنے آبا اجداد کی اتھارٹی چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے آبا اجداد کی وہ ٹریڈیشن جاری رکھو جو حضرت ابراہیم کا ٹریڈیشن ہے اور حضرت موسیٰ کا ٹریڈیشن ہے اور حضرت عیسیٰ کا ٹریڈیشن, اس کو بالکل جاری رکھو. لیکن جو چیز ان کی نہیں ہے اگر تم نے بدماشی کی ہے اس لیے ٹریڈیشن کرپٹ ہو سکتے ہیں. تو ٹریڈیشن الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہوتا, اس لیے ٹریڈیشن کو ہمیشہ چیک کیا جائے گا اس ٹیکس کے ساتھ جو کہ ورڈ آف دا گاڈ ہے. چونکہ مسلمانوں نے ورڈ آف دا گاڈ کو محفوظ کیا ہے اس لیے وہ ٹریڈیشن کو تطہیر کرنے کے سب سے زیادہ اہل ہے, کیپبل ہے. اور علماء کی امپورٹنس سگنیفیکنس اس لیے ہے کہ وہ اسے جانتے ہیں, اگر اس میں کوئی گڑبڑ کرے گا وہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے, کوئی بدماشی کر رہا ہے, چاہے وہ جتنا بھی بڑی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو, جتنا بھی وہ نیک آدمی ہو, لیکن جیسے ہی وہ انحراف کرے گا نا قرآن و سننا کی اسٹیبلشمنٹ, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے.
اچھا, اس میں جو آپ نے بات کی ہے ڈفرینس کی, مطلب اس میں تو بنیادی طور پر تو جو ہے ڈفرینس جو ہے اسکور جو اسٹیبلش ہو رہا ہے تو اس کی وجہ تو ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کے ساتھ ہے اور کیپٹل مارکیٹ اس کے ساتھ ہے. اگر اسٹیٹ اور کیپٹل مارکیٹ کو اس کے ساتھ مطلب ایلیمینیٹ کر دیں تو ڈفرینس کا اسکور ختم ہو جائے گا اسی میں.
جی, مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جیسے انہوں نے اگزامپل دی نا اس کی, وہ جیسے اپنا یہ تھے منو سلوا جن کے پاس آتا تو یکسانیت سے تنگ آ گئے نا. انہوں نے کہا روز یہ کیا, ہم لوگ روز یہی کھائیں گے, یکسانیت سے وہ پختہ آ گئے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو یکسانیت ہوتی ہے اس سے ایک اکتاہٹ کی جو بنیاد ہے وہ تو جسٹیفائی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ میں تبدیلی کرے گا یا فارم میں تبدیلی کرے گا, جو بنیادی مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو اسٹیٹ ہے یا کیا کہتے ہیں گلوبل کیپٹل ہے وہ بنیادی طور پر ایک چیز میں تواتر چاہتا ہے اور ایک چیز میں تبدیلی کو جسٹیفائی کرتا ہے. یعنی کہ کیپٹل کی حاکمیت پر تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے نا, کیپٹل کی اکیومولیشن کے طریقوں میں ڈفرینس ہے نا. مثلا یہ کہ آپ جوائنٹ اسٹاک مارکیٹ سے کما لیں یا کیا کہتے ہیں بینکنگ سیکٹر سے کما لیں, لیکن آپ ان دی اینڈ آپ پرپیچویٹ کیپٹل ہی کریں گے. اسی طریقے سے ریاست اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ایگزیکٹوز کی پاور استعمال کرے, مارکیٹ کی پاور استعمال کرے, اپنا کیا کہ جوڈیشری کی پاور اختیار کریں, ان دی اینڈ سوورن تو اسٹیٹ ہی رہے گی. تو بنیادی طور پر اور اگر کوئی اسٹیٹ اپنی سوورینٹی برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئی تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی دوسرا وہ اسٹیٹ ختم ہو جائے گی, اور اسٹیٹ اگر ختم ہوئی تو ویکیوم نہیں کریٹ, ایک دوسری اسٹیٹ آ جائے گی وجود. تو پہلی بات تو یہ کہ ریپیٹیشن جو ہے یعنی کہ جو ڈفرینس ہے اس کے اندر ایک پلین کے اوپر تو یوں سمجھنے کہ ریپیٹیشن ہے نا, ایک پلین کے اوپر تو کنسسٹینسی ہے, ایک پلین پہ تو کانسٹنٹ ڈینومینیٹر موجود ہے. اس کانسٹنٹ ڈینومینیٹر کا الٹیمیٹ ریپرزینٹیٹو کون ہے اس پر ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اس پہ لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. یو نو
مجھے کیا مطلب سلوہ کی جو مثال ہے قرآن کی اس کی بنیاد پر تکرار کو ثابت کرنا تو ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو اس تناظر میں ہے کہ جب آدمی حالت جہاد کے اندر ہے اور حالت کشمکش کے اندر ہے, اس کے اندر وہ ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو حالت امن کے اندر ممکن ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ میدان جنگ میں لڑنے کے قابل نہیں ہوگا, اس لیے اس کو یہ مطلب ٹھیک ہے سزا جو ہے مطلب, پھر اس کے بعد جو ہے مطلب اس پوری جو اصل تھی ان کو جو ہے صحرا میں لیا کر ختم کر دیا گیا, اس کے بعد پھر نئی اصل پیدا ہوئی بنی اسرائیل کی جو ان تمام جو ہے آسائشوں اور مطلب آلائشوں سے پاک تھی, پھر اس کے بعد ان کو اختیار دیا گیا. تو اس کا تو اس سے یہ مطلب عطیہ مطلب اخذ کرنا کہ تکرار ثابت ہو
نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ جو ڈومیننٹ ڈسکورس ہے وہ اگینسٹ ریپیٹیشن, اس لیے وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو یہی نظر آئے گا, کیونکہ ڈومیننٹ ڈسکورس ایسا ہے نا جو بتا رہے ہیں. علامہ اقبال کی اس نے پوئٹری پڑھی, پہم اردم روایہ زندگی ہے وہ فلاں یہ وہ, تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ یہ تو بس علامہ اقبال کی پوئٹری رکھ لی, اس کے بعد اس نے قرآن پڑھی اور پوری قرآن کے اندر جو بھی ریپیٹیشن اس کو دکھائی دی اس کو سرکل کر دیا, اور اس کے بعد کنڈیم کر دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی کنڈیم کیا ہم بھی کنڈیم کر رہے ہیں کیونکہ علامہ اقبال نے کنڈیم کیا. تو مطلب یہ کہ جو ڈومیننٹ ڈسکورس ہوتا ہے نا اسی کا اسپیکٹیکل آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے. تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تکرار جو ہے اس کا بھی ایک ڈسکورس ہے, لیکن ابھی وہ کمزور ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورسپونڈنگ ویلیو اسٹرکچر ہے وہ بھی ریزسٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ خاص قسم کی تکرار رہی فیملی کے لیول پر, سوسائٹی کے لیول پر, ریلیجن کے لیول پر, ٹریڈیشنل کے لیول پر, تو بہت سارے گلوبل انٹرسٹ جو ہیں اس میں ایک آبسٹیکل کریٹ ہوگا, اور اس کے لیے جو انٹلیکچوئل ان پٹ لے لیتے ہیں وہ تھوڑے بہت پوسٹ ماڈرن رائٹرس وغیرہ کو ویکیپیڈیا سے پڑھ پڑھ کے اپنا ڈان وان میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جو یعنی کہ ڈان اخبار جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جس لیول کا ان کا انٹلیکٹ ہوتا ہے ان کے لیے وہ سطح بھی بہت زیادہ انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ ہوتی ہے, اور جب وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرتی تناظر کے اندر تو انہیں ہر طرف یکسانیت نظر آتی ہے یہ وہ, تو وہ ان کو ظاہر ہے کہ اس کو کرٹیسائز کرنا آسان ہوتا ہے. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ریپیٹیشن کا جو ڈسکورس ہے وہ کنفارمسٹ ریڈیکلزم کے ڈسکورس کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے ریڈیکلائزیشن کے پروسیس کو تاکہ وہ کرٹیسائز کر سکے کنٹمپرری لائف فارم.
کوئی اور اگر سوال
جی بھائی نہیں نہیں میں 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 ابھی تو اس حل کے اوپر تو جا ہی نہیں رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض یہ کہ تمہیں میں یہ دیتا ہوں کہ یار اس کو ذرا تبدیل کر دو, تم نے اس کو اس طرح کیا کہ یہ کچھ اور ہی بن گیا, تو پھر تم نے تبدیل نہیں کیا, تم نے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا, اس میں تم نے کوئی جدت پیدا نہیں, تم نے اس کو ڈسٹارٹ کر دیا. فرض یہ تم نے اس کو گولا بنایا اور گونا بنا کے اس کی پیپر بال بنا دی, تو میں کہوں بھائی وہ کہاں گیا ٹیشو پیپر, میں اس نے پیپر بال بنا دی, بچوں کو کھیلنے کے لیے کچھ تھا نہیں, پیپر بال کہتے ہیں سر اس میں تھوڑا سا میں نے سمت بانڈ ڈالا पहले उससे एक दो सुट्टे मारे, उसके बाद फिर उसका पेपर बॉल बनाया और उसको धूप में रख दिया, वो बहुत अच्छी बॉल है, खुद अगती भी है यार, वो तो तुमने उसको तबाह कर दिया। फिर नहीं सर, मैं उसमें जिद्दत पैदा की, जिद्दत तुमने पैदा की लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ उसकी एग्जिस्टेंस ही कर दी। तो तुमने अगर उसको ही तब्दील कर दिया, जैसे ईसाइयत के साथ एक आदमी ने कहा मैं एंटी क्राइस्ट मूवमेंट डेवलप कर रहा हूँ, और एंटी क्राइस्ट मूवमेंट की दलील बाइबल से ही निकाल लो, और सलीब मुकद्दस जो कि ईसाइयों के पास सलीब मुकद्दस है उसको उल्टा कर दे, और हज़रत ईसा का सर नीचे और टांगे ऊपर कर दे, और कहे कि भाई ईसा को तो शिकस्त हो गई, शैतान कामयाब हो गया, मैं शैतान की परस्तिश करूँगा, और कहे ये मैं ईसाइत से मैंने सीखा, ये मैंने जिद्दत पैदा कर दी ईसाइयत, ईसाई में जिद्दत पैदा कर दी है आपने, ईसाई तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना, आपने पहले उसको खुदा का बेटा था और फिर मैंने कहा खुदा का बेटा क्योंकि शैतान से हार गया मैं शैतान का साथ दूंगा, और तुम कह रहे हो इसका ईसाइयत भी, ईसाइयत भी है ये, तो लोग बोलेंगे ना भाई इसमें ईसाइयत कहाँ रही, तुमने ईसाइयत वाली कौन सी बात है, तुमने तो ईसाइयत से इन्हराफ कर दिया पूरा का पूरा, या इन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ ना होमो सेक्सुअलिटी की दलील दूंगा बाइबल से, और बाइबल हाथ में पकड़ के मर्द से मर्द की शादी करवाने की तुमने दलील निकाली शुरू कर दी, और तुमने कहा देखिए मैंने ईसाइयत में जिद्दत पैदा कर दी, पहले जो था सिर्फ मर्द और औरत की शादी होती थी, अब माशाल्लाह मर्द मर्द की भी हो सकती है, औरत मर्द की भी हो सकती है, मर्द और छक्के की भी हो सकती है, छक्के की छक्के से हो सकती है, छक्के की औरत से हो सकती है, औरत की छक्के से हो सकती है, औरत की औरत से हो सकती है, क्या मैंने जिद्दत पैदा कर दी। तो लोग कहेंगे भाई ये तो तुमने ईसाइयत के गले पे छुरी फेंक दी ना, तो तुमने सही नहीं किया काम, तो कहे नहीं इसमें हर्ज किया है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि मर्द से शादी ना करें, औरत कर ले मर्द से शादी, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम हलाल को थोड़ी हराम कर रहे हैं, हम तो नई इश्तिहाद करके नए दरवाजे खोल रहे हैं, इश्तिहाद के नए दरवाजे तो आपने खोल दिए बाइबल को पढ़कर, लेकिन आपने अब मर्द और औरत और मर्द की शादी के अलावा जो दूसरी सारी शादियाँ हो रही हैं उनको किस खाते में डालेंगे इस इश्तिहाद के नाम पर। तो हमारे यहाँ जो लोग इश्तिहाद करना चाह रहे हैं वो ये कहते हैं हम मना थोड़ी कर रहे हैं आपको तखलीक से, हम तो नए दरीचे खोल रहे हैं, जिस तरह ईसाइयत ने नए नए दरीचे उन्होंने खोल गए, ईसाइयत की फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ईसाइयत की कंटेंट, तो हमें दुख होना चाहिए कि ईसाइयत का ऐसा कैसे किया गया, ईसाइयत के साथ अगर ये हुआ तो ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था ईसाइयत के साथ। यस
इसमें तो फिर ये कि वही होगा फिर, मतलब रिपीटेशन होगा, अगर आप ईसाइयत को एक मतलब कांस्टेंट फॉर्म के अंदर करेंगे फिर तो रिपीटेशन ही होगा, रिपीटेशन तो जो है कुरान और सुन्नत जीसस आदत में, मतलब ये रिपीटेशन क्या कुरान खुद उसी के खिलाफ है।
नहीं नहीं नहीं, मसला क्या, मसला ये है कि मैंने ये बताया ना कि रिपीटेशन इन इट सेल्फ ना वैल्यू किया जाता है, रिपीटेशन हमेशा देखा जाए रिपीटेशन ऑफ व्हाट और डिफरेंस ऑफ व्हाट, वो मैं नेक्स्ट सेशन में देखूंगा तफसील से, अभी मैंने सिर्फ इस इशू को प्रॉब्लमेटाइज किया। अगर हमने कहा नहीं हम तो रिपीटेशन के वो हैं कायम, तो उसका मतलब है कि आप बड़ा ख़तरनाक काम करो, मैं ये नहीं कह रहा कि रिपीटेशन, मैं बता रहा हूँ रिपीटेशन का जो डिस्कोर्स है वो कमज़ोर हुआ है डिफरेंस के डिस्कोर्स पे। अब मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर ये बताऊँगा कि डिफरेंस का डिस्कोर्स बुनियादी तौर पर अगेंस्ट द डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्न डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस है, ना कि ट्रेडिशनल लाइफ, उसको तो वेस्ट ने पहले ही तबाह कर दिया था, उसका तो काम उतार चुका था वेस्ट। ये जो डिफरेंस का जो डिस्कोर्स है इस्लाम वगैरह का नहीं है, ये डिस्कोर्स है मॉडर्न डिस्कर्सिव प्रैक्टिस का। मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर पहले मॉडर्न डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस बताऊंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा कि ये डिस्कोर्स के ऊपर, ये रिपीटेशन का जो डिस्कोर्स है बुनियादी तौर पर अगेंस्ट मॉडर्निटी है, ना कि अगेंस्ट रिलीजन।
करते हैं, ऐसा करते हैं।
अगर फर्ज किया कि एक इदारा आपने बनाया और इदारा बनाने के बाद उसमें आपने कहा कि इसमें हमसे ये मिस्टेक हुई, तो फौरन से नहीं होगा, उसकी सपोर्टिंग एक इंस्टीट्यूशन जनरेट है। जैसे अगर आप स्कूली ही एग्जाम्पल ले लें तो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर बड़ी तगैरात पैदा हुए हैं, ग्रेजुअल हुए हैं, लेकिन रेडिकल नहीं होते, ग्रेजुअली उसके अंदर तब्दीलियाँ और तगैरात आते गए। पहले ये था कि ख़ास उम्र से पहले स्कूल जाते ही नहीं थे बच्चा, ठीक है, फिर उसकी स्कूल जाने की जो इब्तदाई एज लिमिट थी उसको कम किया, फिर और कम किया, फिर और कम किया, फिर और कम किया। अब माँ बाप को भी एडमिशन लेना पड़ता है बच्चे के पैदा होने से पहले से, यू नो, तो उसमें तगैरात आते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि तगैरात नहीं आते, लेकिन इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट उसमें एक खासम की यकसानियत भी होती है, इसीलिए, और उसमें एक खासम की यूनिवर्सैलिटी भी होती है। आप देखो पूरी दुनिया में जो फौजें हैं उनमें एक खास किस्म का रिपीटेशन है, सारी फौजें लेफ्ट राइट करती रहती हैं। किया है कभी इंसानों ने इस तरह दुनिया की फौजों ने कभी इस तरह किया? क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप एक स्टैंडिंग आर्मी बना देते हैं, वो खा खा के मुस्टंडे होते रहते, लड़ते तो है नहीं, क्या करें वो, क्या करें वो, दाने घूम पीछे घूम आगे घूम दाने घूम पीछे घूम, ये करते रहते। दुनिया में जब स्टैंडिंग आर्मी होती थी वो मुस्तकिल और मुसलसिल लड़ती रहती थी, उन्हें पता होता था अगर इसको छोड़ा तो ये बगावत कर देगी, वही हमारी गर्दन काट देगी। तो एक तरह स्टैंडिंग आर्मीज को इंगेज रखा जाता था, जैसे अमेरिका इंगेज रखता है, हमेशा स्ट्राइक करता है। आप पिछले 50 साल की 100 साल की तारीख, हर 5 साल 2 साल बाद अमेरिका किसी ना किसी मुल्क में घुस जाता है, क्यों? बड़ी आर्मी है उसकी। अच्छा, दूसरी तरह की वो होते हैं जो कि सब लड़ते हैं, सोसाइटी लड़ती है। मुसलमानों में स्टैंडिंग आर्मी थोड़ी थी, सब लड़ते थे, सब लड़ते थे, लिहाजा वो बुनियादी तौर पर सोल्जर नहीं, बुनियादी तौर पर कोई वो होता था, किसान होता था, कोई ताजिर होता था, कोई कुछ होता था, ये प्रोफेशनली वो लड़ने वाले थोड़े थे, मर्सिनरीज नहीं होते थे वो। लिहाजा जब वो इलाकों में घुसते थे तो दे डोंट बिहेव लाइक सोल्जर्स, दे बिहेव लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। तो उसका इम्पैक्ट ये होता था कि वो कन्वर्ट हो जाते थे, बहुत बड़ी था। जब आपने बनाई स्टैंडिंग आर्मीज तो कन्वर्जन रुक गया आपके। पठान जब भी नीचे आते हैं, आप पूरी सब कॉन्टिनेंट आई देख लें, मुसलमान होते हैं लोग। जब भी कोई पठान ऊपर से नीचे आया, चाहे शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया हो, या अहमद शाह अब्दाली आया हो, या जो है खिलजीज आए हों, या ये आए हों, क्या कहते हैं, शेर शाह सूरी वगैरह, बड़ी तादाद में लोग मुसलमान होते थे। उसकी वजह क्या होती थी? दे डोंट हैव स्टैंडिंग आर्मी, वो प्रोफेशनल आर्मीज नहीं होती थी, वो आम लोग होते थे जो लड़ने आते थे। लिहाजा जब वो घुसते थे शहरों के अंदर, दे बिहेव लाइक ऑर्डिनरी पीपल। जब मुगलों के पास थी स्टैंडिंग आर्मीज, आर्मीज थी वो होते ही सोल्जर थे लड़ने के लिए। लिहाजा जब वो इलाकों में घुसते थे मार पिटाई करते थे, मुसलमानों के इलाके में घुसते थे तब भी मार देते थे, मुगलों की पठानों से लड़ाई थी पूरे पूरे इलाके साफ कर देते थे। लेकिन पठान जब घुसते थे वो ये नहीं करते थे, कन्वर्ट हो जाते थे लोग। आपको पता है राजपूत पठानों के हाथ में ज्यादा कन्वर्ट हुए बनिस्बत मुगलों के, हालांकि मुगलों ने शादियां तक की उनके खानदानों में, लेकिन पठानों के हाथ में ज्यादा, शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी के हाथ में ज्यादा पठान मुगल जो है वो गखड़ और ये राजपूत कन्वर्ट हुए, जिन्होंने मारा है उनको आकर। तो बताने का मतलब ये कि जो मैकेनिज्म है सोसाइटीज के, वो उसको हम प्रॉब्लमेटाइज नहीं करते कि भाई कैसी आर्मी कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, यू नो, इन चीज़ों को हम फेस वैल्यू के तौर पे ले लेते हैं, जैसे ये कोई नॉन कंटेस्टेबल है। कंटेस्टेबल, उनको भी कंटेस्ट किया जाना चाहिए आप। लेकिन पूरी दुनिया की आर्मीज में अगर रिपीटेशन होगा तो वॉर स्ट्रेटजीज में भी रिपीटेशन आ जाएगा, और उस रिपीटेशन की बुनियाद पे एक ही तरह की आर्मी की हेगमनी इस्टेब्लिश हो जाएगी। यानी कि दूसरी आर्मीज ये तस्वीर ही नहीं करेंगी कि हम लड़े इनसे। क्यों? क्योंकि सेट पैटर्न है, ऑलरेडी डिटरमाइंड पैटर्न। पहले ऐसा नहीं होता था, हर जो वॉर मशीनरी होती थी उसकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती थी, डिफरेंटली लड़ते थे। और जंगों का पहला उसूल ही होता था सरप्राइज। सरप्राइज सबसे खौफनाक चीज होती है मैदान जंग के अंदर, कि आप सामने वाले को सरप्राइज करो। तो मुसलमानों की जो सक्सेस थी वो ये थी कि वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे, और वो जिस तरह से कन्वेंशनली लड़ा जाता है उस तरह वो लड़ते ही नहीं था, अनकन्वेंशनल वॉर लड़ते थे वो। तो कहते थे कि इस तरह के लोग हैं, छोटी छोटी तलवारें उनके ऊपर कपड़े की धज्जियाँ बांध के आते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। पर्शियंस जब पर्शियंस ने देखा ना इनको, तो ये तलवारों के दस्तों के ऊपर कपड़ा बांध रहे थे। पर्शियंस ने कहा कि तुम इस हालत में हमसे लड़ने के लिए आओ, तुम लोग जरूरत, ये धज्जियाँ बांधी हुई है तुम लोगों ने अपनी तलवारों को, इन छोटी छोटी तलवारों से तुम लड़ने आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम अपनी औकात भूल गए? तो मैदान में फैसला कर लेंगे। तो उसने कहा चलो इनकी हैसियत के मुताबिक इनको गिफ्ट दो। चलो कभी इनकी हैसियत क्या है, इनकी तो बिल्कुल ही भिखारी हैं ये लोग। तो उसने कहा मिट्टी टोकरे में डाल के दे दी। तो काका जो थे वो गए थे ले। तो उन्होंने कहा भाई तुमने अपने हाथ से अपनी मिट्टी हमारे हवाले कर दी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, ये रूफाना होगी। मैंने अपने हाथों को अपनी मिट्टी कर दी। तो ये इंटेलिजेंस ऑफ माइंड जो है स्ट्रेटजीज के ऊपर अफेक्ट होता है। तो वो जिस तरह सफ़े बांधते थे उस तरह बांधते ही नहीं थे सफ़े। अब तो आप देखेंगे, आप यहीं पे बैठ के बता सकते हैं कि जो आर्मी होगी इसकी फ्रंट लाइन कैसी होगी, सेकंड लाइन कैसी होगी, मेन लाइन कैसी होगी, सप्लाई कैसे आएगी, एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल। रिपीटेशन नहीं है इसमें। और मार किस पे पड़ी? अभी पूरी दुनिया को मार पड़ी ना अफगानिस्तान में। क्यों? अनकन्वेंशनल वॉर, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कैसे लड़ रहे हैं वो। कन्वेंशनली लड़ते ही नहीं। अगर वो कन्वेंशनली लड़ ही नहीं रहे तो पूरी दुनिया की आर्मीज थी ना उनके साथ, शिकस्त खा गई ना उनके साथ। कंबोडियंस के साथ भी अनकन्वेंशनल वॉर लड़ी, शिकस्त खा गया। तो अगर आप कन्वेंशनल प्लेन पे चलोगे तो आप प्रेडिक्टेबल होगे ना भाई। तो आर्मीज के अंदर भी रिपीटेशन होती है।
लेकिन मतलब तालिबान का मामला है कि उनकी आर्मी कोई सेट पैटर्न से थोड़ी है। ये जो नेशन स्टेट्स की जो आर्मी है ये तो सारी की सारी अमेरिका या जो मतलब बरतानिया का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ये डिजाइन हुई लिया। इनको तो आप बता सकते हैं ये किस तरीके से लड़ेंगे,
किस तरह लड़ेंगे,
असला भी वहीं से आता है,
असला भी होगा,
टेक्नोलॉजी वही होती है,
क्रेडिबिलिटी
तो सही नहीं होती।
बिल्कुल, इसका तरीका ये है कि आपको अगर अगर आप उनको खौफजदा करना चाहते हैं तो आपको अनकन्वेंशनल वॉर स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी, और वो एक्सपेंसिव भी नहीं होगी ज़्यादा। ये आपको बता दूँ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी।
नहीं, ये जो फौजें हैं मतलब ये जो नेशनल आर्मीज हैं वो लड़ने के लिए थोड़ी बनाई गई, ये तो कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के दिफा के लिए। इनका क्या है, एक कुछ कैसे फैला अमरीका रूस को कर्जा दे रहा है, रूस चीन को कर्जा दे रहा है, वो इंडिया को कर्जा दे रहा है, वो सऊदी अरब को दे रहा है। तो तभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि यूनान ने ईरान को, ईरान ने रोम को कर्जे दिए, खिलाफ ही नहीं हुए बुनियादी तौर पर। तो एक ही ऑर्डर के लिए सबके सब तैयार हुए, लिहाजा एक ही उनके पास टेक्नोलॉजी है, एक ही जो है पैटर्न है। मतलब उनको जरूरत क्या है डिफरेंस की, जब पूरी सोसाइटी कैपिटलिस्ट है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, और सब कैपिटलिस्ट ऑर्डर के लिए जो है पैदा किए गए, तो डिफरेंस की जरूरत क्या है? वहाँ तो रिपीटेशन ही होगा।
बिल्कुल सही है, रिपीटेशन, और रिपीटेशन है। आप देख लीजिए रिपीटेशन। ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हुई हैं दुनिया में सोसाइटीज और आर्मीज के बीच में, आर्मीज और आर्मीज के बीच में नहीं हुई। कंबोडिया जो था वो तो जो रियासत थी वो तो कोलैप्स कर गई, तो सिविलियंस ने लड़ी ना बाद में कंबोडियन वॉर। کہ انقلاب جو لے کے آئے تھے وہ تو سویلینس تھے, تو وہ انقلابی تھے وہ, تو انہوں نے لڑا. اسی طریقے سے ریڈ آرمی اور وائٹ آرمی کی جو لڑائی ہوئی, اس میں جو یورو فائلس تھے اور رشین فائلس تھے, ایک سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے, اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے, سوسائٹی کی لڑائی تھی. سول وار امریکہ کی, اس کے اندر بھی کنونشنل اور ان کنونشنل آرمی تھی, یعنی کہ برطانیہ جو تھی اس کے مقابلے پہ امیرکن سویلینس جو تھے وہ لڑ رہے تھے, انہوں نے شکست دی ان کو. تو دنیا میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ تو آرگنائزڈ آرمیز اور سوسائٹیز کے بیچ میں, اسٹیٹس کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی ہیں. ہاں, جرمن فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے, یہ صحیح بات ہے کہ وہ ہوئی ہے جنگ, لیکن وہ ورلڈ آرڈر کے ڈٹرمنیشن کا تھا. اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے نتیجے سبھی مارے جاتے ہیں اور نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے آرمیز کو آرمیز سے بچانا چاہیے لڑنے کو. لیکن میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہر جگہ پہ ریپیٹیشن ہے, ریپیٹیشن آپ کو ہر جگہ پہ دکھائی دے گا. کوشچن یہ ہے کہ ریپیٹیشن فار واٹ, میں کیوں ریپیٹ کروں, میں کس لیے ریپیٹ کروں, یہ ہے بنیادی سوال جس کو ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں. نہیں, مسئلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ ڈفرینس کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تھی, لیکن اس زمانے کا ڈسکورس ہی یہ تھا, یعنی کہ نیشن اسٹیٹ ایمرج ہو رہی تھی نا, نیشن اسٹیٹس ایمرج ہو رہی تھی, پوری دنیا میں نیشن اسٹیٹ ایمرج ہوئی ہیں. جس طرح سے انگریزوں نے اور فرینچ نے بیٹھ کر نقشہ لیا اور نقشہ لینے کے بعد کہا یہ ہے جارڈن, تو جارڈن قوم بن گئی, یہ ہے عراق, عراقی قوم وجود میں آ گئی, یہ ہے پیلسٹین, پیلسٹینین قوم وجود میں آ گئی, یہ ہے چیکوسلواکیا وجود میں آ گئی. تو مطلب یہ کہ جس طرح میں اس کے اوپر کاغذ پہ لائنیں کھینچ رہا ہوں اس طرح قومیں کیسے بن رہی ہیں. تو پاکستان اکیلا تھوڑی بنا ہے پاکستان, یہ ہم لوگوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. 92 اسٹیٹس آزاد ہوئی ہیں, 92 اسٹیٹس. ہاں, یہ اور بات ہے کہ مختلف بنیادیں ڈفرینٹ ہیں اس کی, کہ اسلام کے نام پہ بنی پاکستانی ریاست, اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں تھے اور ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اگر ایک ساتھ رہے تو اس میں کانفلکٹ زیادہ ہوگا اور گلوبل کیپٹل کا انٹرسٹ تھریٹن ہو سکتا ہے, لہٰذا اس کو اس طرح کر دیا. تو آپ نے اسلام کے نام پہ بنا لیا ملک, لیکن کیا پاکستان اور انڈیا دونوں جو ملک بنے انہوں نے کیپٹل کے انٹرسٹ کو تھریٹن کیا ہے کہ نہیں؟ انڈیا کی جو ایوریج گروتھ ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں وہ تقریباً 11% ہے, ایوریج 11%, اور ایک عام انڈین کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے 9% گرا ہے, 9% گر گیا, یعنی کہ 10 سال پہلے جو ہمیں انڈین کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا ایک عام انڈین کا وہ گرا ہے, اور سرمایہ انہوں نے بہت جمع کیا. اب یہ اور بات ہے کہ اسی معاشرے کے اندر لوگ جو ہے بھنگی اور چمار اور دھیڑ اور رکشہ چلانے والا وہ اس پہ تالیاں پیٹ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آدمی نے $1 ارب کا گھر بنایا, تو اس کا مطلب ہے سسٹم نے اس کو انسان بنا دیا نا, ڈسپلن میں, یعنی کہ ایک انڈین اس بات پہ خوش ہو رہا ہے کہ $1 ارب کا گھر بنایا اور خود رکشے پہ بیٹھا ہوا پکوڑے کھا رہا ہے. ابھی تو کس بات پہ خوش ہو رہا ہے بھائی, اس میں کون سی خوشی کی بات ہے؟ $1 ارب کا مطلب ہے 60 ارب روپے انڈین, 60 ارب روپے کا گھر بنایا ہے ایک آدمی نے 3 انسانوں کے لیے, ایک ایسے ملک میں جس میں 12 کروڑ لوگ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہم انڈیا ترقی کر رہا ہے, انڈیا کے بڑے بڑے گراؤنڈ اور انڈیا کے بڑے بڑے اسکائی اسکیپرز دکھا رہے ہیں اور فلموں کے اندر وہ وہاں پر شوٹ کر رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں انڈیا کتنی ترقی کر رہا ہے اور پرسکون ہو رہا ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈسپلن آف دا کیپٹل نے اس کو انسان بنا دیا.
ابھی انڈیا نے جو فوڈ سیکورٹی اسکیم انٹروڈیوس کی ہے, مطلب 80% انڈینس کے لیے اتنی غربت ہے, سبسیڈائز فوڈ جو دیا ہے دنیا کی سب سے بڑی اسکیم.
वरना भूखे, अगर भूखे रहे तो सरमाए का क्या होगा, उनको जिंदा तो रखो ना कि वो जिंदा तो रह सके, अगर वो सब मर गए तो क्या होगा, तो उनको जिंदा रखना। पाकिस्तानी कंसीव नहीं कर सकते इंडियन गुर्बत, मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी तस्वूर नहीं कर सकता इंडिया में जो गुर्बत की हालत, उसके बावजूद इंडियन इतने सख्त नेशनलिस्ट हैं कि आप बता नहीं सकते। मुसलमान तक जो है वो इंडिया इंडिया करते रहते, मुसलमान जो आपको टीवी पाकिस्तान में पता चलता है ना कि इंडियन जो है मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, ये करते हैं, आप इंडियन मुसलमानों से मिलकर देख लें, मुसलमान इंडियन नेशनलिज्म और इंडिया ये और इंडिया वो और हमने ये कर लिया हमारी क्रिकेट, ये ढकोसला है ना, सिखा दिया ना उनको। अबे भाई तुम तो बैठे हुए हो धारीदार पजामा पहन के, फटी हुई बनियान पहन के, तुम्हें इससे क्या कि किसी ने 60 अरब रुपए का घर बना दिया, तुम अपनी हालत तो देख लो, बीड़ियाँ बना रहे हो तुम घर में बैठे हुए बेरोजगार, किस बात पे फख्र कर रहे हो तुम?
उम्मीद तो है ना, मतलब हाँ। उम्मीद पैदा कर दी है, तुम भी कभी ऐसे हो सकते हो।
क्या पाकिस्तान, मुझे कह रहा है क्या पाकिस्तान में किसी ने बनाया? मैंने कहा भाई पाकिस्तान में नहीं बनाया तो अच्छी बात है ना, तो बड़ी अफसोसनाक बात है ना ये कि एक आदमी 60 अरब रुपए का घर बना ले 3 आदमियों के लिए एक ऐसे माशरे में जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं, करोड़ों बच्चे भूखे रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर रात को, करोड़ों रोड के ऊपर, हजारों फैमिलीज हैं जो पूरी हल्के इससे उनसे बात कर रहे हैं, तो करोड़ों लोग जो हैं वो फुटपाथ पे रहते हैं, रहते ही फुटपाथ पे, रहते ही फुटपाथ, यू नो। तो आप जो है उसके ऊपर फख्र कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी इस रिपीटेशन ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन को आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया, इस रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्वेश्चन क्यों नहीं किया, इस रिपीटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक मार्केट के पैटर्न्स को आपने क्यों नहीं क्वेश्चन किया, इसका मतलब आप लॉप साइडेड है, आपका
आइडियलाइज कर दिया ना कि मतलब वो जो लाइफ पैटर्न है वो उन सब के लिए आइडियलाइज होगा कि ये है तो यही आइडियल हो गया, अचीवेबल नहीं है लेकिन एफर्ट तो हो सकती है इसकी।
हाँ,
तो इसका मतलब उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये सिस्टम ठीक है,
ठीक है, और इसमें जो बेचारे इक्के दुक्के कामयाब हो जाते हैं ना उनको सारी दुनिया के सामने ला ला के दिखाते रहते हैं कि मैं जो है ठेला लगाता था, फिर ठेला लगा के फिर मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, अब मैं यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया। तो उसमें कैपिटलिज्म में कामयाब लोग हमेशा कम और नाकाम लोग हमेशा ज़्यादा होते हैं, तो अब सिस्टमेटिक जो नाकामी होती है उसे इंडिविजुअल की नाकामी के तौर पे पेश किया जाता है, और जो सिस्टम की अंदर कोई कामयाब हो जाता है उसको सिस्टम की कामयाबी के तौर पे पेश किया जाता है, समझे। और उसके मध्य मुकाबल माशरों के अंदर अगर कोई नाकाम होता है तो उसे सिस्टम की नाकामी के तौर पे पेश किया जाता है, और उसमें कोई अगर कामयाब हो जाता है तो उसके इंडिविजुअल एफर्ट को पेश किया जाता है, और ये हमारा इंटेलिजेंशिया करता है इसे। आपको पता चली गया बिलियंस ऑफ डॉलर इनको मिल रहे हैं, खा रहे हैं, ये मजे कर रहे हैं, पैसे लेते हैं, इंटेलिजेंशिया पैसे लेती है, रूलिंग एलीट पैसे लेती है, मीडिया पैसे लेता है, सब पैसे लेता है, जो बिकना चाहेगा बिकेगा, सवाल ये आप अपनी कीमत क्या लगाते हो। ऑल विच इज सॉलिड मेल्ट्स इनटू वाटर, आप बेचने वाले बनो, हर चीज बिकेगी, ख्वाब बिकेंगे, ख्याल बिकेगा, अल्फाज बिकेंगे, जबान बिकेगी, आवाज बिकेगी, आपका रवैया बिकेगा, आपका अंदाज बिकेगा, आपका जिस्म बिकेगा, आपकी मुस्कुराहट बिकेगी, सब बिकेगा, आप बेचने वाले बने, समझे। तो ये है और वो रिपीटेटिवली हो रहा है, एक मॉडल के बाद दूसरी मॉडल, एक एंकर पर्सन के बाद दूसरा एंकर पर्सन। आपको पता है बास जो चैनल्स हैं, बास चैनल्स खुद अपने एंकर पर्सन की वीकनेसेस जमा करके रखते हैं, पता है बात आपको, है? और उससे उसकी इनकम को काउंटर कर लेते हैं और आपस में एक दूसरे से शेयर भी कर लेते हैं। फर्ज किया अगर फड्डा हो गया, वो दूसरी जगह पे जाने वाला है तो उस चैनल को दे देते हैं कि इसका पैसे कम कर दो। अगर आप गंदे हो गए एक चैनल के ऊपर, अब उस चैनल का आप काम नहीं कर रहे लेकिन आपको पता है तेज़ बंदा है कहीं ना कहीं तो घुस ही जाएगा, तो उस चैनल से मुआहदा करते हैं कि भाई ठीक है इसकी तनख्वाह जो है ना इतनी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। बोले नहीं वो फिर कैसे ना, ये देख लो भाई इसके कारनामे, नन्हे के कारनामे दिखा देते, नन्हे के कारनामे देखे, नन्हे को सीधा रखते। क्यों? क्योंकि ऊपर जो लोग हैं वो सब भी तो फ्रेंड है ना, उनके भी तो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, एस्टैब्लिशमेंट के अपने इंटरेस्ट होते हैं, मार्केट के भी जो ऊपर हाई अप्स में बैठे होते हैं उनके इंटरेस्ट भी तो ओवरलैप कर रहे होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ओवरलैप नहीं कर रहे, वो एंटागोनिस्टिक होते हैं हमेशा। ठीक है, अभी यहीं पे रोक देते हैं, सही है।
दो बजे
मैं खत्म होती है वहाँ तक।